ओम शांति। इस सायंकालीन सत्र में आप सभी का दिल से स्वागत है। अरे कम से कम अपने लिए ताली बजा दीजिए एक। और यह जो सत्र होगा इसका नाम है पैनल डिस्कशन अर्थात विद्वत विमर्श। माना सिर्फ स्टेज पे जो लोग बैठे हैं वही बात नहीं करेंगे, बात आप लोग भी करेंगे। और हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप लोग जितना बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेंगे यह हम लोगों का डिस्कशन उतना ही शानदार और उतना ही उपयोगी होगा जिसके लिए हम आए हैं यहाँ पे। और आज का विषय है द बेसिस ऑफ वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यूज एंड स्पिरिचुअलिटी। इसका हिंदी में तात्पर्य है कि विश्व परिवर्तन, मूल्य और आध्यात्मिकता। वैसे विषय ये तटस्थ है, मतलब कि यह सार्वभौमिक है, चाहे स्त्री हो या पुरुष दोनों के लिए है। लेकिन अगर एक कदम इससे आगे बढ़े तो इसमें महिलाओं की भूमिका, इस पे हम लोग बात करेंगे कि अगर विश्व को बदलना है तो उसमें मूल्य और अध्यात्म कितना बड़ा कारगर होगा और उसमें महिलाओं का रोल क्या होगा, इस पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन इस बात करने से पहले जो हमारे अतिथि हैं, इसमें हमारे जो आज मंच पे लोग होंगे अपने अपने क्षेत्र के बहुत नामचीन लोग हैं। और जो लोग भी आपके मन में सवाल होगा हम लोग उस मुद्दे पे, हर सवाल पे बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे से बातचीत करेंगे, ताकि जो हमारे मन में जो प्रेजेंट समय जो प्रैक्टिकल जीवन में जो तकलीफें हैं, जो समस्याएं आती हैं, जो रुकावटें आती हैं, उस पर हम लोग बातचीत करके एक निष्कर्ष निकालें। तो हमारे जो पैनलिस्ट हैं, जो हमारे स्टेज पे लोग बैठेंगे, ये अपने अपने क्षेत्र के नामचीन लोग हैं। मैं उन लोगों से आग्रह करता हूं कि बिना विलंब किए आज इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। बीके गीता बहन सीनियर राजयोगा टीचर हमारे माउंट आबू की हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप आके अपना स्थान ग्रहण करें इस पे। बीके डॉक्टर किरण एचओडी कार्डियक एनेस्थीसिया एम्स भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली की हैं। आप वहां की कार्डियक की एचओडी हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। मैं उनसे आपसे कहता हूं कि आप भी पधारे यहां। मंजिल नानावटी प्रेसिडेंट हैं मां इंटरनेशनल एनजीओ के। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप यहां पधारे, जल्दी से अपना स्थान ग्रहण कर लें। सोनम सिंह डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस जयपुर, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप भी अपना आकर स्थान यहां पर ग्रहण कर लें। अब हम सोच रहे हैं कि अगर इस इतने बड़े मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे तो उसके पहले क्यों ना भगवान को थोड़ा सा याद कर लें, ताकि वो शक्ति आ जाए जिससे हम लोग इन समस्याओं का समाधान ढूंढ सकें। तो ये कार्यक्रम शुरू करने से पहले 3 मिनट हम लोग पुनः ईश्वर की याद में बैठेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, ताकि हम लोग आज जो बातचीत करें कम से कम एक ऐसा रास्ता निकले जिससे हम लोग अपने कर्म क्षेत्र पे सफल हुए। 3 मिनट की ईश्वर याद में। ओम शांति। देखिए जो हम लोगों का सत्र है उसकी शुरुआत गीत से ही हो गई है कि गुण और अवगुण के अंतर को हम लोग आज समझेंगे। कई बार हम इस भूल में चले जाते हैं कि गुण और अवगुण का अंतर ही नहीं समझ पाते हैं, और आज का तो युग ऐसा है कि अवगुण को ही गुण समझने जाने लगा है, जो सबसे बड़ी समस्याओं का कारण है। कार्यक्रम शुरू हो इसके पहले मैं बहनों से अनुरोध करता हूं कि जो हमारी सम्माननीय अतिथि बैठे हैं उनका जरूर अभिनंदन किया जाए, ताकि एक खुशनुमा माहौल में हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। बहनों से मैं अनुरोध करता हूं कि आप गुलदस्ता और बुके भेंट करके स्वागत करेंगे। स्वागत ये सिर्फ यहां का नहीं, स्वागत आप लोगों का भी है, क्योंकि जब हम दोनों शरीक होंगे तो कार्यक्रम अच्छा होगा। और सबकी यही भावना है कि आप सब लोग इसमें शरीक हैं। गीता बहन जी का स्वागत हो रहा है और सोनम सिंह जी हैं उनका भी स्वागत हो रहा है। डॉक्टर उषा किरण जी का स्वागत हो रहा है। मंजिल नानावटी जी का भी स्वागत हो रहा है। ये सब लोग अपने अपने क्षेत्र से बहुत विद्वान हैं, अपने बहुत पटल रखते हैं, और ये स्वागत हमारा भी और साथ में हमारे तरफ से आप सबका कोमल। ये सिर्फ परंपराएं हैं जिसके तहत हम लोग करते हैं, लेकिन असली स्वागत दिल से होना चाहिए, जो भारतीय संस्कृति जिसके लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। अब मैं चूंकि इसमें पार्टिसिपेशन आप लोगों का भी है, तो मैं समय की कद्र करते हुए मैं चाहता हूं कि बिना विलंब किए हम लोग आपस में बातचीत शुरू करें। और मैं चाहता हूं मैं जो हमारे मंचासीन अतिथि हैं आपसे मैं जरूर अनुरोध करूंगा कि जो आज का सब्जेक्ट है उस पर जरूर आप अपना मंतव्य रखें, लेकिन आपसे एक विनम्र गुजारिश है कि करीब 7 से 10 मिनट का आप जरूर अपना वक्तव्य रखेंगे, क्योंकि उसके बाद हमारे जो सामने लोग बैठे हैं वो भी हमारे अतिथि हैं, तो आज हम लोग उस पर बातचीत कर पाएंगे, क्योंकि समय की एक सीमा है और इस समय की सीमा का अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो जो हम लोगों का सत्र होगा बहुत फ्रूटफुल होगा, बहुत लाभदायी होगा। इसी कड़ी में बीके गीता बहन जी से अनुरोध करता हूं कि आज का जो विषय है कि अगर विश्व का ट्रांसफॉर्मेशन होना है तो उसमें मूल्य और आध्यात्मिकता कितना बड़ा रोल अदा कर सकता है। गीता बहन के बारे में अगर हम कुछ बताना चाहें तो बता दें, क्योंकि वैसे इनका बायोडाटा लंबा है और उसमें समय जाएगा तो मैं नहीं चाहता। अच्छा, सुबह परिचय हो चुका है, आप खुद ही सामने से करें कि सुबह परिचय हो चुका है। हाथ उठाएं, सब लोग जानते होंगे गीता बहन को। बहुत बढ़िया। मैं गीता बहन जी आपसे जानना चाहता हूं कि आपने चुका सुबह भी थी आप सत्र में, लेकिन जो आज का विषय है ये सार्वभौमिक है, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है, लेकिन हम लोग एक कदम बढ़ के उससे आगे बात करेंगे कि महिलाओं के संदर्भ में अगर विश्व का परिवर्तन होना है तो उसमें मूल्य और आध्यात्मिकता कितना बड़ा रोल अदा कर सकता है। आप अपना इस पे विचार समय को देखते हुए रखें, फिर हम लोग आगे बात करेंगे।
परिवर्तन संसार का नियम है और प्रतिक्षण परिवर्तन तो होता ही रहता है। हम इस प्रकृति से बने हुए जगत में हैं, समय और प्रकृति के संसर्ग में आकर परिवर्तन होता ही रहता है। प्रतिक्षण परिवर्तन होते हैं, लेकिन यहां जो हम बात कर रहे हैं विश्व परिवर्तन की, इतिहास बताता है कि समय प्रति समय विशेष रूप से भी परिवर्तन हुए हैं, क्रांतियां हुई है। धर्म के नाम पर भी परिवर्तन हुए हैं और विज्ञान के द्वारा भी परिवर्तन हुए हैं और सामाजिक रूप से भी परिवर्तन हुए हैं। अगर हम धर्म की दृष्टि से देखें तो जो भी धर्म स्थापकाए हैं उस समय के समाज की स्थिति को देखते हुए कोई न कोई मूल्य संसार को सिखाने के लिए ही वे आए, और विशेष रूप से उन्होंने उस बात पर जोर दिया। जैसे कि द्वापर युग में जब धर्म की धारणाएं ढीली हो जाती है, कमजोर हो जाती है, देवताएं अपनी दिव्यता से नीचे उतरने लगते हैं, तो अब्राहम के द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना होती है और जीवन के नियम मर्यादाओं को उन्होंने एक डिसिप्लिन या लॉ के रूप में सिखाया। इसलिए इस्लाम में आप देखिए सख्ती है, जो 5 नियम है वो उनको पालन करने ही हैं। रोज 5 बार नमाज पढ़ना है, रोजा रखना है, कुरान पढ़ना है, हज करना है, जकात भरनी है। तो जो धर्म की या मानव जीवन की धारणाएं नेचुरल और सहज रूप से थी, वो जब कमजोर होने लगती हैं, तो बाहर से लॉज बनाए जाते हैं, और इस्लाम ने इस प्रकार मानव जीवन को डिसिप्लिन और लॉज सिखाए। जब धर्म के नाम पर अंधश्रद्धा, बलि, हिंसा, भय, क्रियाकांड बढ़ने लगे, तो उस वातावरण को कंट्रोल करने के लिए बुद्ध आए और उन्होंने हमें अंडरस्टैंडिंग दी कि मानव जीवन के दुख का कारण उनकी इच्छाएं हैं, और जब तक हम सम्यक मार्ग नहीं अपनाएंगे तब तक दुख से छूट नहीं सकते हैं। न अति दमन न अति भोग, उन्होंने एक सम्यक मार्ग संसार को सिखाया, और उन्होंने मैत्री, अहिंसा, करुणा, ये सारे वैल्यूज के आधार पर समाज की अंधश्रद्धा, भय, हिंसा, बलि के वातावरण को कंट्रोल किया। क्राइस्ट ने हमें प्रेम और भाईचारे की बातें सिखाई, क्योंकि उस समय जो यहूदी समाज था उसमें बहुत ही जोर जुलम और सीतम का वातावरण था। इस तरफ भारत की बात करें तो जब धर्म के जो अधिकारी थे उनके जीवन में साधना वगैरह कमजोर हुए, तो शंकराचार्य जी ने आकर के त्याग, तपस्या, वैराग्य, ये जो सारे आत्मा का उत्थान करने वाले मूल्य है उनकी शिक्षा दी, जिसके कारण इन सब ने आकर संसार को पतन से रोका, और एकदम जो सभ्यता संस्कृति गिर रही थी उनको इस प्रकार के मूल्यों का ज्ञान देकर और आध्यात्मिकता के आधार पर फिर से उन्होंने समाज को और संसार को ठीक किया। इसी प्रकार आप देखिए कि विज्ञान के द्वारा भी काफी क्रांतियां हुई हैं, समाज के क्षेत्र में भी काफी सुधार के कार्यक्रम हुए। तो जिसने भी क्रांति जिस भी क्षेत्र में की, कोई एक उम्दा ध्येय से और कोई न कोई मूल्य को सामने रख करके की है। अब जबकि हम कलयुग के अंत समय पर पहुंचे हैं और टोटल विश्व परिवर्तन की क्षण सामने आ गई है, तो विश्व परिवर्तन माना एक आमूल परिवर्तन, संपूर्ण परिवर्तन। और जब एक जड़ों से, रूट से चेंज लाना है और टोटल चेंज लाना है, तो उसके लिए तो आध्यात्मिकता की आवश्यकता रहती है, क्योंकि आध्यात्मिकता का अर्थ ही है वो सारे ही मूल सनातन सत्यों का ज्ञान। जो सनातन सत्य कितनी भी हलचल के बीच हमें अचल रखते हैं, और जब हलचल होती है जो उसमें अचल रहती है वही सत्य के रूप में बाहर आते हैं। तो आध्यात्मिकता के मूल सत्य हम आत्माओं में शक्ति भरते हैं, और उस शक्ति के आधार पर हम अपने जीवन के मूल्यों को स्थायी रखते हैं। और जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के मूल्यों में, सिद्धांतों में, अपने जीवन की रीति नीति में दृढ़ रहता है, तभी वो परिवर्तन का सूत्रधार बन सकता है, चेंज एजेंट का काम कर सकता है। तो अब जबकि हमें कलयुग से सतयुग लाना है, नेगेटिविटी को खत्म कर सकारात्मकता लानी है, तो वो सकारात्मकता का जो आधार है आध्यात्मिकता और नैतिकता, उसमें हमें मजबूत और शक्तिशाली बनने की जरूरत है। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बड़ी बारीकी से सुना होगा कि जो गीता बहन जी ने जिस पे बात की है, अगर इसमें किसी की उम्र 50 से अगर ऊपर की होगी तो आपने देखा होगा कि पहले के जमाने में और आज के जमाने में कितना बड़ा बदलाव हुआ है। निस्संदेह हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। भारत देश दुनिया में अहमियत रखता है हर तरह की तरक्की से। लेकिन जो इन्होंने एक बात रखी है और आप लोग भी महसूस करते होंगे, जो जिसपे हम लोग आज जिसको केंद्र में रख के हम लोग बात करेंगे, मैं समझता हूं कि डॉक्टर उषा किरण हमारे सामने हैं। अगर आपके बारे में थोड़ा हम बताना चाहें तो आपका बायोडाटा बहुत लंबा है, लेकिन आप देश के सबसे बड़े अस्पताल दिल्ली में भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जो आप लोग जानते होंगे जिन्हें एम्स के नाम से जाना जाता है, उसमें कार्डियक डिपार्टमेंट की हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब ये विद्यार्थी जीवन में थी तब से इस राजयोग ध्यान का अभ्यास करती हैं। डॉक्टर साहब, आपके सामने आज देखते हैं कि तमाम जो साइकोसोमेटिक बीमारियां हैं, आपके सामने हर तरह के मरीज आते होंगे, तरक्की के पैमाने आपके सामने आए हैं, तमाम विकास हुए हैं, लेकिन वो कहां पे इन चीजों की मिसिंग है जिसके लिए आज हम यहां पे बात करने आए हैं। तो जो अगर विश्व का बदलाव करना है तो उसमें मूल्य और आध्यात्मिकता कितना बड़ा मायने रखता है आपके नजरिए से, क्योंकि आप एक पेशे से चिकित्सक हैं, यूं कहें कि आप डबल डॉक्टर हैं, तो आपके नजरिए से इसमें क्या हो सकता है या क्यों इस पे हम लोग बात करना चाह रहे हैं, आखिर में क्यों इसकी जरूरत पड़ी है?
थैंक यू ब्रदर कोमल। विषय बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं एक साइंटिस्ट हूं और यहाँ पे साइंटिस्ट तो सभी हैं क्योंकि सभी साइंस पढ़ते हैं, और साइंस के एक्सपेरिमेंट आप सबने देखे, रिजल्ट देखे, हम सब साइंस का सुख भोग रहे हैं। आज बिजली बनी, टेलीफोन बने, अगर ये परिवर्तन हुआ तो साइंस से हुआ। तो आज का मानव जो मॉडर्न साइंसेस पढ़ता है, मेडिकल साइंस पढ़ता है, ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी भी कोई चीज है, वैल्यूज भी कोई चीज है। शायद आप सब जो बैठे हैं वो आज इस इंस्टीट्यूशन में आए हैं जिसका बेसिस है स्पिरिचुअलिटी। आप सब यहाँ रह रहे हैं, आपने देखा वैल्यू सिस्टम। छोटे परिवार में दो लोग मेहमान आते हैं, क्योस हो जाता है, और यहाँ देखिए गॉडली फैमिली, कोई क्योस हुआ, हजारों ने भोजन किया, भोजन बना, आवाज भी नहीं आई। तो यहाँ साइंटिस्ट बैठे हैं, जरूर मानते होंगे कि कोई पावर जरूर है। दिस पावर इज डिफरेंट फ्रॉम द साइंस पावर। और मैं जब एज ए स्टूडेंट आई थी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बिल्कुल विश्वास नहीं करते स्पिरिचुअलिटी में। अगर उनके पेरेंट्स कहते हैं बेटे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे मंदिर गुरुद्वारे कहीं होके आना, पता कैसे बोलते हैं, मॉम देयर इज नो टाइम फॉर दिस। और फिर उन्हें कहा जाए नहीं आज एग्जाम है, ब्लेसिंग, और उनके शब्द सुनना कैसे होते, कहते हाँ हाँ आई वेंट टू हनुमान मंदिर मॉम, मैंने कह दिया था हाय हनु बाय, आई हैव नो टाइम फॉर दिस। दिस इज व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, व्हाट इज रिलीजन, ये हम सबका कॉन्सेप्ट हो गया है। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि साइंटिस्ट स्पिरिचुअलिटी को मानना मुश्किल है, पर यहां पर मुझे पता लगा साइंटिस्ट विंग है जो DRDO के इन्वॉल्व हैं, प्रेसिडेंट भी यहां आए थे जब डॉक्टर अब्दुल कलाम होते थे, और उन्होंने जो वर्ड कहे थे यहां से जाके साउथ में उन्होंने भाषण किया था, उन्होंने ये कहा था कि इतना सुंदर कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी मैंने सिर्फ माउंट आबू ब्रह्मा कुमारीज में देखा और कहीं। और उनके साथ उन्होंने ऐड किया था कि साइंस अगर स्पिरिचुअल पीपल के हाथ में आ जाए, ये मैंने देखा, तो स्वर्ग बन सकता है। और एक जमाना था, दो मिनट और लेती हूँ, एक जमाना था जब 1985 की बात है, और मैं myself और हमारे डॉक्टर MD गुप्ता और उनकी सिस्टर उर्मिल बहन, हम सब लोग, क्योंकि मुझे बहुत फायदा हुआ था स्पिरिचुअलिटी का अपनी हर रेस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, तो हम लोग दिल्ली में दूरदर्शन आकाशवाणी भवन गए उन्हें कहने के लिए कि हम स्पिरिचुअलिटी पे इन मेडिकल साइंस स्पिरिचुअलिटी फॉर ट्रीटिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स हम थोड़ा सा दूरदर्शन में देना चाहते हैं। और वो जो उनके वहां पे चीफ थे वहां पे, उन्होंने हमें लेटर दिखाया, ये देख लीजिए हमें रिलीजन के बारे में कुछ देने का अलाउड नहीं है। और आज परिवर्तन देखिए, टीवी के अंदर कितने चैनल स्पिरिचुअलिटी रिलीजन ये बातों पे आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन जो समाज ने माना है कि ये एक बहुत पावर है। अभी तक दुनिया मानती रही कि कोई भी परिवर्तन के लिए भौतिक पावर चाहिए, वेदर, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, पर आज इंसान ने रियलाइज करा जबकि साइंस भी आ गई, स्पिरिचुअल चैनल्स भी आ गए, रिलीजन्स भी आ गए, सब कुछ ओपन है, ऑप्शन जो चाहो वो यूज कर सकते हो। परंतु जब देखा कि दशा बहुत खराब हो चुकी है तो उन्होंने क्या कहा, आयुष मिनिस्ट्री बना दी। और हमें अभी रिटर्न में आता है कि प्लीज ऐसे ऐसे वाले एक्सपेरिमेंट्स करिए, ऐसे वाली स्टडीज करिए जो आप प्रूव कर सकें कि कैसे मेडिटेशन, योगा, वैल्यूज, स्पिरिचुअलिटी आपके जीवन के अंदर आपको हेल्दी बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे भाई साहब ने कहा साइकोसोमैटिक डिजीजेस, एवरी डिजीज इज साइकोसोमैटिक, मुझे बीमारी है उसका मेरे को डिप्रेशन आने का 90% चांसेस है, कोई भी बीमारी आ जाए। और अगर डिप्रेशन है ही, वो तो एट टाइम्स ऑफ इंडिया ने बहुत पहले लिखा था कि बाय 2020 80% ऑफ द पॉपुलेशन विल बी इन डिप्रेशन, जिस तरह से ये बीमारियां बढ़ रही हैं। और स्पेशली आजकल हर हॉस्पिटल में ये स्पिरिचुअलिटी, योगा, मेडिटेशन के ऊपर किया जा रहा है, और हमने भी इसके ऊपर किए हैं, और ऐसे ऐसे साइंटिफिक पेपर प्रेजेंट किए हैं। जब वो कॉमन बीमारी हेडेक है, सिर दर्द, हार्ट डिजीज के ऊपर तो बहुत ही रिसर्च है, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस, आपने अपनी दादी जी को देखा 101 साल की उम्र, कितना क्लियर माइंड, एब्सोल्युटली स्टेबल माइंड। तो स्पिरिचुअलिटी और वैल्यूज इन लाइफ के बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं, एंड नाउ इट इज प्रूव टू बी मस्ट, एब्सोल्युटली मस्ट फॉर एवरीबडी। थैंक यू,
बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अच्छे से ताली बजा दीजिए, क्योंकि आजकल जो सबकी बीमारी जो है दिल की बीमारी होती है, और डॉक्टर साहब मैंने जहां तक सुना है दिल की बीमारी के संदर्भ में कि अगर भारत में अगर इसी तरीके से बीमारी बढ़ती रही तो आने वाले 15 सालों में भारत वैश्विक राजधानी बन जाएगा हृदय रोग का, जहां तक मुझे ज्ञान है।
ठीक आपने।
हाँ, और आगे जब वापस लौटेंगे तो आपसे कहेंगे कि दिल की बीमारी होती क्यों है, क्योंकि इसी केंद्र में है ये टॉपिक आज का। और आपने दोनों पक्षों को बड़े बारीकी से रखा है क्योंकि आप उसमें बहुत अनुभवी हैं। अब हमारे सामने एक ऐसी प्रतिभा है जो राजनीति से आती है और राजनीति के बारे में हर किसी को बहुत अच्छे से ज्ञान है आज के युग में, सोनम जी। मैं क्योंकि हमारे जो क्रम है क्रम से मैं थोड़ा सा अलग हुआ हूं क्योंकि हमारे बीच में जो जर्नलिस्ट हैं उनसे हम बाद में बात करेंगे। सोनम जी से, सोनम जी आप जो है मैंने जहां तक मुझे ज्ञान है कि आप 8 सालों से राजनीति में अभी आई हैं और कांग्रेस के साथ काम कर रही हैं, उसके साथ साथ आप सोशल वर्कर हैं। आजकल जो राजनीति की परिभाषा है देश में और दुनिया में, ये दोनों चीजें मैच नहीं खाती इसमें, और जहां तक मुझे ख्याल है कि आप कहीं ना कहीं राज्यों का अभ्यास भी करती हैं, तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में ये मूल्य कहां ठहरते हैं जिनकी हम आज आप लोग बात कर रहे हैं? जरा आप इस, आपका इसमें क्या अनुभव, उसको आप जरा शेयर कीजिए लोगों के साथ।
ओम शांति। थैंक यू सो मच भाई जी, आपने बहुत ही कठिन और बहुत ही इजी और बहुत सॉफ्ट सवाल किए हैं, लेकिन जितनी मेरी बहनें माताएं बैठी हैं इनको बताना बहुत जरूरी है। राजनीति हो चाहे कोई भी सेक्टर हो, पर पहले हम राजनीति की ही बात करते हैं। हम मीटिंग्स में होते हैं, हम कॉन्फ्रेंस में होते हैं, हम जनता के लिए काम करते हैं। कई बार हमारे काम की वर्क की ऐसी स्थिति होती है कि हमें बहुत बड़े लेवल पे कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, कई बार हमें ढानी ढपानी में भी घूमना है, कई बार हमें खेती में भी जाके कैंपेनिंग करनी है। योग, जब मैं खुद अपनी ही बात करती हूँ, अभी छोटी सी बात बता रही हूँ, हमेशा मैं योग करती हूँ, चाहे बाबा का नाम 20 मिनट ही मैं मेडिटेशन में जाकर लूँ। ब्रह्मा कुमारी इसकी तो मैं वर्णन कर नहीं सकती और शायद मैं ऐसी गाथा भी नहीं गा सकती क्योंकि समय की भी बहुत कमी है और मेरे खुद के इतने सारे अनुभव हैं बहनों कि मैं आपको क्या बताऊं। और मेडिटेशन में राजनीति का जो कॉन्टेक्ट है वो ये है कि सबसे पहले तो हम किसी भी स्ट्रेस में हो, किसी भी चिंता में हो, अगर योग में है और मेडिटेशन में है तो एकदम वो चिंता खत्म हो जाती है। मैं ये नहीं कहती कि हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ पल के लिए हमें राहत फील होती है, हम बहुत अच्छा रिलैक्स फील करते हैं। और फिर योग, जिसका नाम भगवान से जुड़ा है, बाबा से जुड़ा है, बाबा एक ब्रह्मा कुमारी एक चमत्कार है बहनों। हम जब एक परिवार में होते हैं, हम माताएं होती हैं, बहनें होती हैं, परिवर्तन पे आ रहे हैं तो हम महिलाएं, हमारे में जितने परिवर्तन हम एक वुमन फेस करती है शायद किसी चीज में उतना परिवर्तन नहीं होता है। एक छोटी सी बच्ची होती है, बच्ची से माँ बनती है, माँ से सास बनती है, सास से बहू बनती है और उसको पूरा परिवार संभालना होता है। परिवर्तन वुमन्स बहुत अच्छे से कर सकती है। अगर हम माँ हैं तो हम, मेरा छोटा खुद का बेटा है, मैं उसे ये कहूँ कि बेटा तुम योग करो, मेडिटेशन पे ध्यान दो, विश्व परिवर्तन धीरे धीरे हो जाएगा। हर वुमन ये सोचे कि मुझे अपने परिवार में सबको ये सिखाना है कि हमें योग करना है, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन जब बढ़ेगा, हेल्थ पे तो बहुत सारे प्रॉफिट्स हैं, हेल्थ तो हमारी कभी गलत होगी नहीं। अभी 5 ही दिन पहले का मेरा एक इतना बड़ा अनुभव है कि शायद मैं भी आप लोगों के सामने यहाँ नहीं बैठी होती अगर मेरे साथ बाबा नहीं होते, मेरे साथ मेडिटेशन नहीं होता, योग नहीं होता। मुझे पैरालिसिस का एक ऐसा अटैक हुआ जिसे मैं ना डॉक्टर्स ने पैरालिसिस क्लियर किया ना मुझे फील हुआ, लेकिन बहुत बड़ा, बहुत टिपिकल अनुभव था और मैंने उस समय इमीडिएट जाके योग किया। 3 बार ऐसा अटैक मुझे, 4 बार हो चुका है, मैंने 4 बार उस अटैक को योग से और सिर्फ योग से दूर किया है। ये मेरा अपना अनुभव है। अब हम बात करते हैं कि पॉलिटिक्स में मैं हूँ, बहुत टफ, बहुत कड़ी मेहनत करती हूँ। अब मेरी 13 ईयर्स की बेटी है, 11 ईयर्स का बेटा है, उनको भी एक बार परे हटाकर मैं जिस भी फील्ड में हूँ उसमें फुल ईमानदारी से वर्क करती हूँ। सबसे पहले तो मैं पूनम दीदी को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे यहाँ पे इस जगह जोड़ा। 5 साल से मैं उनकी बहुत आभारी हूँ, सनुसुया दीदी की बहुत आभारी हूँ और मैं इस पूरे परिवार को ऐसा फील करती हूँ कि मुझे अपना मायका और ससुराल याद नहीं आता बहनों, क्योंकि मेरा परिवार अब ये है। इस परिवार ने मुझे हेल्थ, वेल्थ, नेम, फेम सब कुछ दिया है, इसलिए मैं आपसे सिर्फ यही मेरा निवेदन है, अधिक से अधिक जुड़िए। हम एक कोई संत आते हैं, वो भाषण देते हैं तो 500 करोड़, 2 करोड़ महिलाओं का संगठन जुड़ जाता है। अगर हम सच्ची संस्था को समझे और उसके प्रति समर्पण दे अपना, तो हमारा, हम किसी और का भला नहीं, हम खुद अपना भला करेंगे। और मैं सभी यहाँ पे, मेरे जितनी भी मंच पे मेरे बड़े सम्मानीय हैं, उनको सबको थैंक्स कहना चाहती हूँ और उनका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ।
धन्यवाद। आपने जो अपना अनुभव शेयर किया है, साथ सुन के आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा कि सामान्य तौर पर राजनीति में इस तरह की चीजें बहुत कम सुनने और देखने को मिलती हैं। जिस तरह के आजकल की राजनीति की परिभाषा है और जिस तरह के लोगों का एटीट्यूड चेंज हुआ है इसके प्रति और जिस तरह की समस्याएं आई हैं सामने, वाकई अगर आप राजनीति में इस तरह का काम कर रही हैं तो मुझे लगता है कि राजनीति के लिए एक नई शुरुआत होगी आपके यहाँ से।
भाई जी, राजनीति ही नहीं, मैं कहती हूँ हर जगह अगर हम हमारी आत्मा क्लियर है तो हमें हर जगह बहुत अच्छे से फेस कर सकते हैं। और दूसरी बात, पॉलिटिक्स में भी मैं चाहती हूँ यूथ महिलाएं आगे से आगे आके अपना योगदान दें, क्योंकि वुमन्स की हर जगह जरूरत है। वुमन्स एक ऐसा पौधा है, एक ऐसा एनवायरमेंट है, महिला नहीं है तो कुछ नहीं है इस धरती पे। ये एक मैं वुमन हूँ, लेकिन आप सब वुमन्स को ये कहना चाहती हूँ। थैंक यू,
शुक्रिया।
थैंक यू सो।
अब हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है जिनके पास सिर्फ बाहर की दुनिया में ऐसा माना जाता है कि उनसे ज्यादा ज्ञान किसी के पास नहीं होता है। आप लोग सोचिए कौन हो सकता है। पत्रकार, जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट जब टेलीविजन पे बैठता है, जर्नलिस्ट जब कहीं जाता है, क्योंकि मैं खुद भी एक पेशे से जर्नलिस्ट हूं इसलिए मैं सोचता हूं कि लगता है उसको कि हमसे ज्यादा ज्ञान किसी को नहीं है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताइएगा। ऐसा हमारे बीच में मंजिल ननावटी जी हैं, इनका नाम है मंजिल, और एक ऐसी एनजीओ की ये प्रेसिडेंट हैं जिसपे पूरी दुनिया टिकी है और पूरा ये संसार टिका है। माँ, एक माँ इंटरनेशनल एनजीओ है जिसकी आप प्रेसिडेंट हैं। लेकिन अगर इनके बारे में हम थोड़ा और बता दें आपको, तो इसके अलावा भी ये बहुत कुछ करती हैं। वुमेन एम्पावरमेंट पे, लिटरेसी पे, एजुकेशन पे, बेटी बचाओ, हेल्थ चेकअप तमाम। और अभी मुझे बताई है कि यूएनओ की तरफ से इन्होंने डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की डिग्री दी गई थी। इसके साथ में ये पत्रकार भी हैं, प्रेस मीडिया से हैं, ये चीफ एडिटर हैं लाइव न्यूज गुजरात मीडिया की, प्रभारी हैं प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र, सीनियर जर्नलिस्ट हैं न्यूज लाइन के, बहुत सारे हैं। आप इतनी एक लाइन में कि आप एक नामचीन जर्नलिस्ट हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब मैं पत्रकारिता में कदम रखा तो मुझे ये चैलेंज थी कि पत्रकारिता में ये ज्ञान ध्यान की बात बहुत किनारे होती है, क्योंकि बहुत बड़ा ज्ञान होता है। पर जिस विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं, आप कितना इसे सहमत हैं कि वास्तव में विश्व बदलाव के लिए मूल्य और आध्यात्मिकता की जरूरत है? हम लोग बहुत कुछ बदल गए हैं पिछले 5-7 सालों में। जिस तरह से योग और ज्ञान ध्यान के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है, इवन की पूरी दुनिया में एक उत्सव की तरह से मनाया जाने लगा है, इसमें आपकी दृष्टि और आपकी सोच कहां तक ठहरती है कि वास्तव में जरूरत है क्या अध्यात्म और मूल्य की, अगर विश्व बदल रहा है, जिस तरफ हम भाग रहे हैं, विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा हो रहे हैं हम, तो क्यों नहीं इसको साथ लेकर चला जा रहा, क्यों इस पर आज बात करने की जरूरत पड़ रही है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, सोनम जी, सॉरी मंजिल जी?
ओम शांति। मेरे बारे में मुझे नहीं मालूम इन्होंने जो बोला है उस पर मैं खरी उतरूंगी कि नहीं, लेकिन हाँ ये सच है कि मीडिया में जो लोग होते हैं उनको उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी समाज की होती है, बल्कि समाज की ही नहीं, अपने देश की और मेरे ख्याल पूरे विश्व की भी, क्योंकि जो इमेज हम छोड़ेंगे अपने समाज पर वही समाज बनेगा, और जो समाज छोड़ेगा वही देश बनेगा, और देश की जो इमेज बाहर विश्व में जाएगी वहां हमारा विश्व भी उसी स्तर पे अपने को शायद ला के खड़ा करने की कोशिश करेगा। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं ब्रह्मा कुमारी से कम पिछले 15-20 सालों से जुड़ी हुई हूँ। मैंने यहाँ के सभी कोर्सेज डिप्लोमा तो किए हैं, पर मुझे कंठस्थ नहीं है, क्योंकि जब तक उनको रिवाइज नहीं करते रहेंगे तब तक वो एक के ऊपर ओवरलैपिंग होती जाती, क्योंकि दूसरे भी जो विचार हैं वो उसके ऊपर आते जाते हैं। मैं चाहती हूँ मैं फिर से उसको दोबारा से एक बार और ज्वाइन करके, मतलब डिप्लोमा को, बाकी तो रोज ही बैठते हैं ध्यान में, तो हम बाबा के रोज ही बैठते ही हैं। मुझसे एक प्रश्न आपने पूछा है कि मूल्यों की क्या जरूरत है, मतलब परिवर्तन है। हमें ऐसा लग रहा है कि अपने हिंदुस्तान में, मेरे ख्याल में अभी तो यहाँ पे शायद भारत के लोग हैं, बाहर के तो अच्छा हैं, अच्छा तो भी नेपाल भी अपने इंडिया ही है, क्योंकि वो मैं उसको बाहर का नहीं मानती, आसपास के जो भी देश हैं जहां पर हिंदी समझी जाती है और बोली जाती है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ सबसे बड़ी समस्या जो मुझे दिखाई दे रही है या हमें दिखाई दे रही है वो है हरेक नारी के मन में कोई न कोई चिंता और अशांति। शायद मुझे सैकड़ों नारियों में कोई ही नारी उठ के ये कह सकेगी, मुझे कभी कोई चिंता नहीं हुई और मेरा मन एकदम शांत है और अभी भी मुझे कोई चिंता नहीं है। मतलब हो सकता है 100 में से एक होगी, वो भी वो उसका सौभाग्य होगा, हमारा तो। ये जो अशांत मन का जो कारण है, अगर हम इस कारण को दूर कर सकते हो तो वो कारण को दूर करने का शायद मेरी नजर में सबसे अच्छा जो उदाहरण है या जो प्रयास है वो है आध्यात्मिकता। ये मेरा खुद का अनुभव मैं बोल रही हूँ, और मेरे साथ तो बहुत वाकई ऐसे गुजरे हैं कि मुझे मानती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं ध्यान करती हूँ। मैं जब शिव की आराधना में ध्यान में बैठी हुई थी, उस वक्त मैं उठ के मेरे आसन पे से उठ के हॉस्पिटल गई थी और उस वक्त मेरे बेटे का जन्म हुआ था। मैंने कभी किसी ने नहीं सुना होगा कि आसन पे, पूजा के आसन पे बैठ के हॉस्पिटल का वो चिन्ह मिले, पर मुझे मिला था। इसलिए मेरे साथ तो ऐसे बहुत सारे चमत्कार और उदाहरण हैं जो बाबा के आशीर्वाद, शिव के आशीर्वाद है, इसलिए मैं तो उसको मानती ही हूँ। और उस वक्त सारी ही चिंता अगर हम दिल में से निकाल के सामने बाबा के रख दें, इसको हम करके देख सकते हैं, उस वक्त अगर हम रख दें तो मेरे ख्याल में ये चमत्कार एक नहीं, मेरे साथ तो सैकड़ों बार हुआ है, तो वो एकदम तुरंत दूर होता है। मैं यहाँ जो पहुंची हूँ वो भी एक ऐसी ही बात है, मेरे साथ और जो अनुभवी है वो मेरे साथ के यहाँ बैठी हुई है वो सबको मालूम है कि ये कैसे हुआ, क्योंकि मैं नहीं आ सकती थी। परसों तक मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस शिरडी साइंस संस्थान में थी और मैं यहाँ पहुंच भी नहीं सकती थी, लेकिन दीदी शारदा दीदी, उन्होंने जिस तरह से मुझे बाबा के विचार के लिए याद किया, मैं कैसे तुरंत बिना टिकट के, बिना प्लेन के, बिना व्हीकल के कैसे तुरंत यहाँ पे पहुंच गई, ये भी मेरा बाबा का बुलावा था, मैं ऐसा मानती हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो इन्होंने पूछा मूल्यों का क्या उसमें उपयोगिता है विश्व परिवर्तन, मूल्य मतलब भारतीय संस्कृति और संस्कार। अगर ये संस्कृति और संस्कार देने वाला अगर कोई व्यक्ति है दुनिया में, ढूंढने जाओ, कितने भी बड़े डॉक्टर्स बैठे हों, कितने भी बड़े चैलेंजर्स बैठे हों, लेकिन अगर ये मूल्य और संस्कृति कोई दे सकता है इस समाज को या हमारे देश को, वो सिर्फ माँ है। माँ के अलावा मेरे ख्याल कोई प्रिंसिपल, कोई टीचर या कोई भी दूसरा कोई भी व्यक्ति कितना भी जानकार हो वो नहीं दे सकता, क्योंकि माँ की कोख में जब बच्चा होता है तो अभिमन्यु ने जैसे चक्र में से अंदर जाना सीख लिया था, वो बाहर निकले बिना ही सीख लिया, और कहां आके वो अटक गया था हम सब लोग जानते हैं। तो ये जो ज्ञान है ये सिर्फ माँ ही दे सकती है, उसमें उसको सिखाने पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, माँ के खुद के स्त्री के जो संस्कार हैं वही संस्कार उस बच्चे में अपने आप आ जाते हैं। इसलिए मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जरूरत जो हमें है वो अपने खुद की, दूसरों को दें वो तो बहुत दूर की बात है, हम अपने खुद को, हम जो नारी और महिला हैं वो अपनी संस्कृति और साहित्य और संस्कार, उसको अगर हम स्थिर रख के अपनी, और वो भी भारतीयता के साथ, उसको ध्यान में रख के अगर हम चलें तो हम जो करेंगे वही हमारे बच्चे सीख रहे होंगे या देखेंगे, तो जब वो जो देख रहे होंगे वही बड़ा युवा बनेगा और वही वो समाज में काम करेगा जो उसने देखा है और सीखा है। तो ये जो मूल्यों की बात चल रही है ये मैं ये बात इसलिए खास कह रही हूँ, विश्व परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन है, पर उससे पहले एक छोटा सा परिवर्तन अगर हम खुद में अपने में लें, उससे हमारे बच्चे बनेंगे, वही परिवर्तन समाज में जाएगा, स्कूल में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, और जहां इंडस्ट्रीज और जहां हमारे बच्चे काम कर रहे हैं या वो विदेशों में जा रहे हैं, मेरी खुद की दो बेटियां, एक कनाडा और एक यूएसए में, दोनों एंगेज हैं, एक की मैरिज भी हो गई है, तो हमारे ही बच्चों के थ्रू सारे संस्कार बाहर विदेशों में भी जा रहे हैं, इसका मतलब विश्व परिवर्तन हो रहा है ना, क्योंकि जो हम यहाँ कर रहे हैं और सिखा रहे हैं वही बाहर भी जा रहा है। इसलिए ये जो सीढ़ी है ये मेरे ख्याल में एक गीता में एक लिखा हुआ है, अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत मन कभी सुखी रह सकता है क्या? तो अगर हमें सुखी रहना है तो हमें संस्कारों का सिंचन अपनी जो पीढ़ी है, अपने जो बच्चे हैं, उनको पहले तो देना पड़ेगा। दूसरा, क्योंकि मैं मीडिया से हूं और इन्होंने मुझसे एक बात पूछी थी, मैं वो भी बता दूं, मीडिया की जो जिम्मेवारी है वही चित्र, हम कभी भी पुराना इतिहास उठा के देखें, मीडिया में जो लाइन लिखी हुई होती है वो सैकड़ों वर्षों के इतिहास में जो लाइन लिखी होती है उसमें से हम ये देख पाते हैं कि उस वक्त क्या समाज था, मतलब समाज का दर्पण वो मीडिया की एक लाइन निश्चित कर देती है। तो अगर हमें जरा सी भी जिम्मेवारी का एहसास हो और चिंता हो अपने यहाँ की संस्कृति की या भारतीयता की, तो हमें मीडिया को बहुत बड़ी जिम्मेवारी के साथ
वही चीज को प्रदर्शित करना चाहिए जो हम चाहते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि कोई हमारा सम्मान करे तो पहले हमें सामने वाले का सम्मान करना पड़ेगा, तभी सामने वाला हमारा सम्मान करेगा। हम ये सोचे कि हम कुछ भी कर रहे हो अंदर, फिर वो पॉलिटिक्स हो, मेरा भी कनेक्शन है, मैं रही हूँ अपने गुजरात की प्रेसिडेंट भी रही हूँ, लेकिन यहाँ ये सब्जेक्ट नहीं है। तो पॉलिटिक्स का संबंध मीडिया से है, मीडिया का संबंध पॉलिटिक्स से है, और मीडिया का ही संबंध समाज से है, नारी से है, बच्चों से है और शिक्षा से है। अगर हमारी नारी, हमारी महिला शिक्षित नहीं हुई और गांव में वो सिर्फ पानी कुएं पे भरती रह गई या शौचालय बन रहा है कि नहीं बन रहा है यही सोचती रह गई और दूसरों पे छोड़ के बैठ गई कि आप बनाएंगे तो बनेगा, या भ्रूण हत्या, बेटी बचाओ, विधवा विवाह, ये जितनी चीजें जो बुराइयां और जो हमारे यहाँ चल रहा है तो सबको पता है, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। इसमें मैं एक बात बता दूं, कोई कुछ नहीं कर सकता, ना पीएम, ना सीएम और ना मिनिस्टर, सिर्फ महिला अपने आप इसके ऊपर अगर अपने पैरों पर खड़ी होकर आवाज उठाएगी, या आवाज भी उठाने की जरूरत नहीं, खुद ही कर ले जो भी कुछ करना है। क्योंकि आज तो हम जानते हैं स्त्री और पुरुष दोनों बराबर के दर्जे पे, पुरुषों पे क्यों ढाला जाए कि उनके कंधों पे चल के अपन बंदूक चलाए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम खुद अगर अपने बच्चे को हम अपनी कोख में हम क्यों टेस्ट कराने जाएं कि ये लड़की है या लड़का। आजकल आपको पता है इंडिया में अगर रेशो देखा जाए तो अपने यहाँ गुजरात में लड़कियों की संख्या लड़कों से कम हो गई है, फीमेल्स कम हो गई हैं और मेल ज्यादा हो गए हैं, इसलिए बहुत मांग आ रही है, ज्यादा मांग मतलब उल्टा हो रहा है। पहले जैसे दहेज होता था ना कि लड़की दहेज दे, अभी उल्टा हो रहा है, लड़के के पास अगर प्रॉपर्टी है, ज्यादा है, जमीन है, ये पटेल्स में शायद बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, तभी लड़की दी जाती है, वरना लड़की ही नहीं देते। तो ये स्थिति क्यों आ रही है, क्योंकि हमारी महिला जागरूक हो रही है। तो ये 100% जागरूकता अगर हमारे पास आ गई तो हमें कोई जरूरत नहीं है किसी के आगे हाथ फैलाने की, चाहे वो वायुसेना हो, चाहे वो शिक्षा हो, आर्थिक हो, हरेक क्षेत्र में नारी तो है। और हमारे ये दादियां दीदियां ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ब्रह्मा कुमारी की, जो विश्व पे राज कर रही है।
मंजिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हम जब आपके जो तारतम्य है, संकलन है, जो आपका जो कहने का तरीका है, जो आप जिस तरह का प्रेजेंट कर रही हैं, हम लोग वापस इस पर डिस्कस करेंगे। मैं चाहता हूं कि ऑडियंस में से आप लोग भी तैयार रहिए सवाल पूछने के लिए जो आपके मन में चल रहे हैं आज के विषय से, क्योंकि हम दोनों लोग बातचीत करेंगे आपस में, तभी जाके हम लोगों के आज इस विषय पर काफी होगा। तो अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कृपया हाथ रेज करें। तब तक मैं एक सवाल डॉक्टर उषा किरण से पूछना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, आपने एक शब्द कहा था कि बदलते दौर में आध्यात्मिक और धार्मिक चैनलों की बाढ़ आई है, लेकिन आप गौर कीजिए कि जितनी तेजी से बाढ़ आई है उतनी तेजी से गिरावट हुई है। आखिर में रीजन क्या है? अगर हम लोग बात कर रहे हैं अध्यात्म पे, बात कर रहे हैं धर्म पे, तो ऐसा क्यों है? अगर हम सचमुच सही रास्ते पे जा रहे हैं, सच में इस चीजों की बाढ़ होगी जिस पर हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जितने चैनल्स बढ़े हैं, धर्म अध्यात्म की दुकानें बढ़ी हैं और लोग अपना अपना मार्केटिंग कर रहे हैं, ऐसे में गिरावट क्यों हो रही है? तरक्की होनी चाहिए, वजह क्या है? क्या या तो धर्म और अध्यात्म की परिभाषा नहीं समझी जा रही है, या कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह भी तो किया जा सकता है?
बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि वास्तव में इंसान चाहता है उसको शांति हो, सुकून हो, अंदर से सत्य प्यार हो, पवित्र प्यार, और आपस में हार्मनी हो, घर परिवार सुख शांति से रहे, परंतु उसके लिए ढूंढता है कहीं टीवी में नजदीक से कुछ ऐसा चैनल मिल जाए जो उसको दे दे। और इसलिए आपने कहा कि वहां तो बाढ़ ही आ गई है, इतने ज्यादा चैनल्स हैं, पर मैंने एक से कहा कि आप ऐसा करिएगा, हमारा पीस ऑफ माइंड चैनल है, उसको देखिएगा। बोले बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर क्या हो गया? बोले ये बाबाओं के चैनल मैंने नहीं देखने हैं कोई भी। ये भी बहुत बड़ा एक कंसेप्ट आ गया है जो आपने कहा कि कहीं हमें गुमराह तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर एक डरने लगा है अब इन बात से, क्योंकि सत्य ज्ञान ना हमारे पास है ना किसी और के पास है। अगर हमारे अंदर हमें रिलीजन से, प्रैक्टिस से, जो हम कर रहे हैं जिसको भक्ति कहा जाता है किसी भी धर्म में, अगर उसमें सत्यता होती तो आज हमारे जीवन में भी सत्यता होती जरूर। हाँ, थोड़ा सा फॉर द टाइम बीइंग हमको, हम ऐसी प्रैक्टिस से, चाहे नमाज पढ़ें या मंदिर जाएं या पाठ करें, हमें थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए शांति मिलती है, 15 मिनट के लिए मिलती है, पर वो भी बड़ी टेम्परेरी, और कभी कभी तो हम उससे भी परेशान हो जाते हैं कि हम बैठे भी और हमारा ध्यान लगा भी नहीं। इतनी व्रत पूजा भी करते हैं, अल्टीमेटली हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा। और कई कई ऐसे न्यूज, जैसे मीडिया वाले बैठे हैं, जो हम उन चैनल्स के बारे में, उन लोगों के बारे में सुनते हैं, तो कुछ कमर्शियल या कुछ और कोई बातें होंगी, जिसकी वजह से आज लोगों का इन चीजों से विश्वास भी उठ रहा है। और कारण ये है कि ये जो वैल्यूज है वो भाषण तो हो गए पर उसको जीवन में उतारा नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमने यहाँ आके देखा, जो हमने यहाँ के सीन देखे, यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे हम रह रहे हैं। एक दिन से नहीं, मैं इसको मोर देन 40 इयर्स से देख रही हूँ। जब मैं स्टूडेंट थी तब भी यही दादियां थी, यही स्टूडेंट थे, यही टीचर थे, और आज वो छोटे छोटे कन्याएं इतनी बड़ी बड़ी राजयोगा टीचर्स और डायरेक्टर्स बन गई हैं बड़े बड़े देशों में जाके। और उसकी यही रीजन है कि यहाँ पे जो कहा जाता है, यहाँ पे जो परमात्मा से सुना जाता है उसको जीवन में उतारा जाता है। जिसको आपने सामने देखा कि वैल्यूज क्या होती हैं, वो कहा सिखाई नहीं जाती, प्रीच नहीं की जाती, भाषण नहीं किया जाते, परंतु जीवन में उतार कर अपने जीवन में लाकर सबके सामने प्रत्यक्ष रखा जाता है। दैट इज द रीजन कि ब्रह्मा कुमारी में आध्यात्मिकता पे जोर दिया जाता है, जीवन में उतारा जाता है, और अंदर से बर्तन जो बुद्धि रूपी है उसको सफाई करने के लिए मेडिटेशन में कॉन्सेंट्रेशन के कोर्सेज कराए जाते हैं। और आप देखिए दादियों का कॉन्सेंट्रेशन कितना अच्छा है कि आपको उनको देखते ही जीवन में, अपने जीवन में चेंज आ जाएगा। उनकी पावरफुल दृष्टि से हमारा जीवन बदल जाता है, क्योंकि इतनी प्योर पावरफुल वाइब्रेशन है। दैट इज द रीजन स्पिरिचुअलिटी शुड बी इन एवरी रिलीजन। जो कि भाषण हो रहा है पर शायद अभी जीवन में उतरी नहीं है, इसलिए इसमें भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन चाहिए। जैसे दीदी ने कहा धार्मिक सत्ता है, पर धार्मिक सत्ता बहुत बड़ा चेंज ला सकती थी, पर जो स्पिरिचुअलिटी वैल्यूज है पहले तो वो अपने जीवन में उतारना बहुत जरूरी है।
धन्यवाद आपका। और मैं समझता हूँ कि अगर किसी के सवाल हो तो आप जरूर पूछें, ऑडियंस में से तमाम बहुत सारे लोग हैं, अगर किसी के सवाल हो तो माइक है यहाँ पे, आप जरूर पूछ सकते हैं। अगर किसी का भी इससे संदर्भ में, और आपको पूछना चाहिए, मुझे लगता है कि आप लोग बैठे हैं तो केवल एक तरफ आगे आ जाइए। और मैं एक चीज ये कह रहा हूँ डॉक्टर साहब कि तब से मूल्य 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 और स्पिरिचुअलिटी, पहले तो ये समझने की जरूरत है कि मूल्य है क्या। आज की जनरेशन को ये नहीं पता है कि मूल्य है क्या।
मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ जो मेरे पास केस आया था, बहुत सुनने वाला है। एक टेंथ क्लास की स्टूडेंट की बात है, उसको अपियर होना था एग्जाम के अंदर, और उसको ये कहा गया था कि वो लड़की हमेशा ही गर्ल ये कहती थी कि मैं जब पढ़ती हूँ मुझे हेडेक होती है, तो मैं एग्जाम में अपियर नहीं होंगी। जब मदर को ये पता लगा, उसने बहुत कोशिश की डॉक्टर्स को दिखाने की, बोलती है देखो आप मेरे से बात नहीं करो, मैं एग्जाम में अपियर नहीं होंगी, वेरी ब्राइट गर्ल। तो बहुत डॉक्टर्स को दिखा के अल्टीमेटली न्यूरोलॉजिस्ट ने उसको, क्योंकि हॉस्पिटल में हमारा मेडिटेशन एंड टेंशन मैनेजमेंट क्लिनिक चलता है, तो मेरे को रेफर कर दिया। अंदर आते ही मदर ने ये बोला कि इसको स्पिरिचुअलिटी नहीं सिखाना। ऐसे क्यों बोले? नहीं, साइकियाट्रिस्ट ने मना किया। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि इसको रिलीजन और ये सब नहीं सिखाना है। मैंने बोला ठीक है, आप बताइए इनका प्रॉब्लम क्या है। बोली मैं मम्मी के सामने नहीं बताऊंगी। बैठी, जो आपने कहा ना वैल्यूज क्या चीज होती है, मदर की क्या वैल्यू है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मदर? केयर। अगर वो केयर नहीं करती नो वैल्यू। और आप क्वेश्चन का जवाब सुनिए, कहती है मैंने बोला आपको क्यों हेडेक होती है, आप क्यों परेशान रहती है, कहती है दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ माई मदर। सर मम्मी तो केयरिंग है, आपको लेके आई है। बोले इनको बाहर कर दीजिए, मैं आपको बताऊंगी। जब वो केयर करती हैं, क्या केयर करती हैं? मैं दरवाजा बंद के पढ़ती हूँ और वो धीरे से देखती हैं ये क्या कर रही हैं, क्या जरूरत है देखने की मैं क्या कर रही हूँ।
डॉक्टर साहब अच्छा लग रहा है आपका, मैं एक सवाल जी बताए।
हेलो, मैं शुभांगी विद्याधर मुळेकर रत्नागिरी महाराष्ट्र से हूँ। मैं स्टाफ नर्स हूँ, तो आप डॉक्टर हैं, तो मुझे ऐसा पूछना है कि हम जब पेशेंट को ट्रीट करते हैं, पेशेंट की मानसिक स्थिति या उसको जो आधार मिलना चाहिए उसके लिए हम जब डॉक्टर से बात करते हैं, तो वो नहीं मानते। वो क्या करते हैं, आते हैं, देखते हैं, पेपर पे कुछ लिखते हैं और चले जाते हैं। लेकिन पेशेंट के पास जरा उसके पीठ पे अगर थपथप आए और उसको अगर कुछ मूल्य देंगे, कुछ ये उसको आधार देंगे और मानसिकता से उसको पेशेंट के पास ये करेंगे, तो इसके लिए आप क्या सुझाव देंगे?
थैंक यू। एक मिनट, हाँ जी बता।
आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये कॉमन प्रॉब्लम है, पर आपके सामने मेरी पूरी टीम आई हुई है एम्स से, जो जितने भी हार्ट के मेजर ऑपरेशन होते हैं, जहां तक कि हार्ट ट्रांसप्लांट के होते हैं, उन वाले पेशेंट्स को ट्रीट करती हैं। वो नर्सिस हैं, सीनियर नर्सिस हैं, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट्स हैं। आप उनसे बात कर सकते हैं, सिस्टर जनक यहां बैठी है, कि वो कैसे ऐसे जो डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं उनको डॉक्टर देखते हैं पर कह जाते हैं नर्स के लिए, सिस्टर के लिए, सिस्टर इनको ऐसा मेडिटेशन कराइए जो ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। और सच में उन्होंने कराया और पेशेंट ठीक हो गया, पर बोले नहीं, मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूं इसको। वो तब ठीक होएगा जब इस हार्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट को आप मेडिटेशन रूम में ले जाए। और सच में उस रूम का वातावरण से बहुत इंप्रेशन हुआ अच्छा, क्योंकि वो खुद नर्सेस, डॉक्टर्स, फिजियोथेरापिस्ट उस रूम के अंदर मेडिटेशन करते हैं। तो हर एक को एक वातावरण चाहिए। अगर डॉक्टर बिजी है, नहीं कर सकता, तपतपा नहीं सकता, कोई बात नहीं, हम सब बाकी जो स्टाफ है अगर वो अपना भी एक चेंज कर ले, अपने वैल्यू सिस्टम को बढ़ा के अपने जीवन में पेशेंट के लिए केयरिंग हो जाए, तो डेफिनेटली इसका असर होता है। सिस्टर जनक और उनकी पूरी टीम बैठी है, वो यही काम करते हैं और ऐसे सेकंड में हीलिंग हो जाती है।
लेकिन पेशेंट का यह रहता है कि हाँ, आप, हमें आप, हमें डॉक्टर से यह होना मांगता।
आप बाद में कर लेंगे इसके सवाल। जी आप बताएं।
मैं ओम शांति, मैं डॉक्टर विद्याभूषण शुक्ला रीवा से हूँ।
इधर मुख कीजिए जी।
अच्छा, मैं संचालक महोदय जी के प्रश्न का उत्तर देने ही आया हुआ हूँ। उन्होंने जो आध्यात्मिकता के बारे में कहा, तो मैं समझता हूँ सत्व, रज और तम तीन विचारधाराएं हैं। तो सत्व ऊंचे है, रज बीच में है, तम नीचे है, और कोई भी धारा जो है ऊपर से नीचे की ओर बहती है। उन्होंने कहा कि अभी बाबाओं की बाढ़ सी आ गई है, तो हमारी तामसिक प्रवृत्तियां ज्यादा बढ़ी हुई हैं, तो इसलिए सत्व की ओर हमारे ध्यान ही नहीं जाता, तो हम वो सोच ही नहीं पाते, तो तामसिक प्रवृत्तियों की ओर क्रमशः नीचे गिरते जाते हैं। इसलिए बाबाओं की ओर हमारा ध्यान कम और राजनीतिक और तांत्रिक प्रवृत्तियों की ओर हमारा ध्यान बढ़ता हुआ चला जा रहा है। मैं यही समझता हूँ
सर। शुक्रिया, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन हम बात उस कोर वैल्यूज की कर रहे हैं, जहाँ से तम आने की जरूरत कैसे होगी जब हम लगातार इन चीजों का प्रयास कर रहे हैं। मैं इसके बारे में मैं जरूर गीता
कलयुग है तो तम का तो वास है
सर। कलयुग हमसे और आपसे है,
हाँ,
कोई अलग से तो आया नहीं।
सत्य की ओर हम जा रहे हैं।
आपका सवाल मैंने सुन लिया।
यहाँ पर आके हम सत्य की ओर बढ़ रहे हैं ना।
देखिए,
तम तो हमारे ब्लड में समाहित ही है, क्योंकि काली में है।
सर आपकी एज मुझे लगती है कि 40 से ऊपर ही होगी, 40 साल पहले और आज के फासले को आप जरा गौर कीजिएगा।
हम काजल की कोठरी में है तो काजल से नहीं बच सकते सर।
सर इसका सवाल
कोठरी में तो काजल से नहीं बच सकते।
आपका सवाल बहुत जेन्युइन है और मैं इसके लिए गीता जी से बात करूंगा। आप बात करता हूँ उसके लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद
दीदी। आप ये बताइए कि जिस तरीके से ये कह रहे हैं, आप दे दीजिए माइक, आप भी बैठ लीजिए प्लीज बैठ लीजिए। हम आपका सवाल अभी, आप जरा ये बताइए कि अगर ये सारी चीजें हमारे सामने उपलब्ध हैं, हम दुकान में जाते हैं, दुकान में हमें क्या खरीदना नहीं खरीदना ये हमें तय करना है, तो आप बताइए जिस तरह का आप सवाल है कि सत, रज और तम तमाम सर्कुलेट हो रहे हैं, तो हम तम में क्यों जा रहे हैं, हम सत क्यों नहीं खरीद रहे हैं? क्या हमारे पास ताकत नहीं है, पहचानने की शक्ति नहीं है, हम खरीद नहीं सकते हैं? तो तम की बात ही कहां से आती है जब दुकान में सारी चीजें उपलब्ध है? आप बताइए।
बहुत अच्छा, भाई ने भी प्रश्न किया है, क्योंकि दुनिया के बाजार में सब कुछ मिलता है, परंतु मुझे अपने जीवन में क्या लेना है। अगर इस बात की जागृति हम सबके अंदर आ जाए, तो कुछ भी दुनिया के प्रवाह हो, तमो प्रधानता के भी प्रवाह हो, तो भी क्योंकि आज इस विद्यालय के पास लाखों गृहस्थी हैं, हम समर्पित भाई बहने तो केवल 25,000 है, पर बाकी जो 10 लाख भाई बहने हैं वो आप सबकी तरह गृहस्थ में रहने वाले ही हैं। पर जब सत्य आध्यात्मिक ज्ञान उन्हें प्राप्त होता है तो उनके अंदर एक ऐसी जागृति आ जाती है कि कैसे भी वातावरण में कैसे भी लोगों के साथ वो रहते हैं फिर भी अपने अंदर वो बुराई नहीं लेते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान को समझने अभ्यास में लाने और धारण करने के बजाय हम उस व्यक्ति संत महात्मा या योगी जो भी हैं, हम उस व्यक्ति पर आधारित हो जाते हैं और हम उसको फॉलो होने लगते हैं। वास्तव में वो भी एक इंसान है, पुरुषार्थी है, वो भी संपूर्ण नहीं है, उनके अंदर भी कई कमजोरियां हो सकती है। हम व्यक्ति केंद्री ना बने, हम ज्ञान केंद्री बने और उसको अपने जीवन में धारण करने का लक्ष्य रखेंगे तो हमें सत्य अवश्य दिखाई देगा और तमो का प्रभाव नहीं आएगा।
थैंक यू, सब समझ गए होंगे जी। आप बताएं जी, माइक में दिख लीजिए।
ओम शांति, मैं नांदेड़ महाराष्ट्र से हूँ। मेरा नाम अलका कुरतड़ीकर है। जो मालेगांव से ग्रुप आया है उनके साथ आई हूँ मैं।
जी जी, सवाल पूछो।
मैं नांदेड़ में 19 साल तक असिस्टेंट गवर्नमेंट लीडर बोल के काम करने वाली हूँ, तो मैंने बहुत से सेशन केसेस देखे हैं। अभी आजकल जो देख रहे हैं, देखने में आता है कि क्राइम रेट बहुत बड़ा है। बाकी के क्राइम के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन स्पेशली ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन जो है वो, उसका क्राइम रेट बहुत बड़ा है। तो मेरा ये सवाल है कि अगर एक वुमन स्पिरिचुअलिटी फॉलो करके ऐसे ऑफेंडर को डिफेंड कर सकती है क्या?
धन्यवाद, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। मैं समझता हूँ कि आप राजनीति में हैं, आपसे ज्यादा बेटर नहीं कोई इसके बारे में बता सकता है। जहाँ सारी चीजों का जो आप कर रही हैं बिल्कुल एक प्रवाह सुनामी होती है वहां पे, जहां तक सुनने और देखने में आता है। मैं समझता हूँ कि आप इस पे जरा बताएं कि आप किस तरीके से ऐसी स्थितियों में आप मेंटेन करते हैं।
बहन जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका और बहुत डिफिकल्टी है।
आप बैठे।
कठिनाइयों में जब हम निकलते हैं तो हमें रास्ते बहुत कम और बहुत दूर जाके दिखाई देते हैं, लेकिन रास्ते कठिनाइयों में भी होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले भाई ने कहा कलयुग, घोर कलयुग में भी रास्ते होंगे। हम सत्य पे हैं तो सत्यता की जीत होगी। आपने कहा कि जो क्राइम्स बढ़ रहे हैं, मानती हूँ मैं क्राइम्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें अपने आप को, हमारी बेटियों को, हमारी आसपास की, अगर हम अवेयर हैं तो शायद, मैं ये नहीं कहती 100% क्राइम खत्म हो जाएंगे, लेकिन 100 में से हो सकता है कि हम ज्यादा भी नहीं तो क्राइम 85 रह जाए। 15 क्राइम पे हम काबू पा सकते हैं। आप वुमन से, आप वुमन विंग बनाइए, आप अपने आसपास के समाज कल्याण में जाके मिलिए, आप अपने आसपास के थानों में जाके कंप्लेंट करें, वहां पे भी आपकी सुनवाई नहीं होती है, तो आप खुद एक आंदोलन कर सकती हैं। हर महिला में, मैंने आपसे कहा था, सबसे बड़ी शक्ति महिला है, आप भी आंदोलन कर सकती हैं। मैं जब जब कभी कभी ऐसे मंच पर जाती हूँ जहां मुझे बहुत कुछ गलत देखने को मिलता है, मैं खुद अकेले नहीं ठीक कर सकती, लेकिन अगर हम एक 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 करके अनेक होंगे तो बहुत सारे चीजों में सुधार होगा।
शुक्रिया आपका। और आपको बहन जी, आपको ये जानकर हर्ष होना चाहिए कि अगर यही सफेद साड़ी बाहर के लोग पहनते हैं तो उनको दूसरे नजर से देखते हैं, और आप जब बहनों के पास सफेद साड़ी पहन के जाते हैं तो कैसा लगता है आपको? स्पिरिचुअलिटी में उतनी पावर है कि मैं इसके बारे में बाद में गीता दिन से। जी जी, राइट राइट, उस स्पिरिचुअलिटी का ही कमाल है। चक्रधारी दीदी पीछे आपकी बैठी, इसकी चेयरमैन है। जी जी, वो एक पावर है, उसके बारे में हम बाद में इनसे बात करेंगे। आप अगला सवाल करें।
ओम शांति, मैं अभी नोएडा से आई हूँ, लेकिन मैं 5 साल से अबू धाबी और दुबई में रह रही थी। अबू धाबी में जैसे कुछ टाइम पहले भी प्रधानमंत्री जी गए थे और वहाँ पे हमारे पास कोई मंदिर नहीं है। दुबई में सिर्फ एक ही है, बहुत पहले का बना हुआ है, और जो मतलब जो पहले से चली आ रही चीजें उसी टाइप से वहाँ पे रखा हुआ है। अब मुझे ओम शांति से जुड़ने के बाद में समझ आ रही है कि क्या है राधा कृष्णा ये सब चीजें। तो अब देखिए, अबू धाबी में बनने जा रहा है मंदिर, जैसा कि प्रधानमंत्री ने किया था तो वहां डिक्लेयर कर दिया गया है। तो अब वो एक स्टार्टिंग स्टेज है और वहाँ पे मैं, मेरा बहुत बड़ा ग्रुप है, 2000 के करीब मेरी मेरी फ्रेंड्स हैं वहाँ पे ग्रुप में, जो हम लोग कुछ न कुछ नोबल थिंग्स करते रहते हैं, बहुत अच्छे वहाँ पे काम किए जा रहे हैं, जो कि मैं यहाँ पे ला रही हूँ। मैं अभी कुछ महीने से ही यहाँ पे नोएडा में आई हूँ, तो मेरे एरिया में जो नोएडा एक्सटेंशन, आपको पता होगा कि नया डेवलप हो रहा है, तो वहाँ पे मैं काफी कुछ कर पा रही हूँ। पहले मैंने काफी वेट किया कि चलो किसी का साथ मिले, लेकिन जैसे जैसे आप लोगों से जुड़ती गई मैं, तो खुद में हिम्मत आई, बहुत आई हिम्मत, और अभी शुरू कर चुकी हूँ। अब अबू धाबी में मैं चाहती हूँ, और दुबई में कोई सेंटर नहीं है।
अच्छा।
मैं गूगल कर चुकी हूँ,
थैंक यू।
तो वहाँ पे हम चाहते हैं जो टेम्पल बने वो आप लोगों के अकॉर्डिंग बने।
अच्छा।
ना कि वो सिंपल वैसे बने।
शुक्रिया आपका सवाल और आपकी उम्मीद, बहुत दोनों अच्छी है। जरूर मैं अपने जो सीनियर्स हैं और पीछे दीदी बैठी हैं चक्रधारी दीदी, जरूर उनके एप्लीकेशन डाल दीजिए, क्योंकि वो विदेशों में ज्यादा रहती हैं, वो रसिया उसिया में।
हाँ जी, मुझे
तो हाँ, तो जरूर हम लोग इस पे बात करेंगे। कह रही कि जो जी डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहिए।
आपने बहुत अच्छी बात कही, मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया था। आप सब यहाँ बैठते हैं, आपसे भी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। कहते हैं सबसे स्ट्रांग क्या होता है दुनिया में? माउंटेन, पहाड़ सबसे स्ट्रांग चीज है माना जाता है ना। पर आपके सामने दो चीजें हैं, एक स्ट्रीम यानी नदी और दूसरा माउंटेन, दोनों में से कौन सा स्ट्रांग है? एक है माउंटेन स्ट्रांग, एक है स्ट्रीम नदी, दोनों में से कौन सा स्ट्रांग है? कितने लोग कहते हैं माउंटेन स्ट्रांगेस्ट है, और कितने लोग कहते हैं नदी स्ट्रांगेस्ट है?
नदी,
एब्सोल्युटली। क्यों? क्यों? क्योंकि वो अपना रास्ता बना लेती है। यही आपने राजयोगा द्वारा अपनी बहनों से सीखा, एंड वी कॉन्ग्रेचुलेट फॉर दैट, एंड डेफिनेटली यू टेक दीदीज हेल्प, आपके पीछे बैठी हैं जिन्होंने रशिया में जाके ये रास्ता बनाया था। सो यू फाइंड ऑल, तभी बाबा हम सबको ज्ञान गंगाएं कहते हैं।
मैम, मेरा नाम सरिता है, नदी ही है मेरा मेरा जो, तो बहती धारा।
हाँ,
बिल्कुल सही।
एक सवाल जो रह गया था, मैं चाहता हूँ दीदी आप इस पर जरूर बताइए कि जो नांदेड़ वाली बहन जी ने सवाल पूछ के गई थी, ये बहुत बड़ा सवाल है आज के दौर के लिए, कि अगर एक नारी स्पिरिचुअलिटी लेके किस तरीके से समाज के तमाम जो आसुरी प्रवृत्तियों हैं उसमें स्टेबल रह सकती है। मुझे लगता है कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, ये कई लोगों का सवाल होगा मुझे लगता है, तो आप इसको जरूर डिस्क्लोज कीजिए।
नांदेड़ की बहन ने बहुत सुंदर सवाल किया। आध्यात्मिकता हमें अपने शील चरित्र की सुरक्षा में बहुत मदद करता है। देखिए, हम खुद जिस बात के कॉन्शियस होते हैं वहां हमारा बार बार ध्यान जाता है, और हमारा अपना जहां बार बार ध्यान जाएगा वहां जो हमें देखता है उसका भी ध्यान जाएगा। अगर हम खुद बॉडी कॉन्शियस है, देह के भान में है, अभिमान में है, तो जरूर हमें देखने वाले हर व्यक्ति का ध्यान भी हमारे शरीर में ही जाएगा। इसलिए परमात्मा ने हम बहनों को पहला अभ्यास यही सिखाया है कि इस शरीर में रहते अगर मैं अपने आत्म स्वरूप में और अपने गुणों में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाऊंगी, तो जब मैं अपनी बॉडी की कॉन्शियस नहीं हूं तो दूसरा कोई भी मुझे उस नजर से देख नहीं सकता है। आध्यात्मिकता हमारी आंतरिक आत्मशक्ति, पवित्रता, सत्यता को बढ़ाती है, तो वो जो हमारे शुद्ध विचार है वो ही एक ऐसा ओरा क्रिएट करता है जो दूसरा हमें उस नजर से देख नहीं सकेगा। तो बेशक आध्यात्मिकता बहुत हेल्प करती है। आज हम बहने दुनिया भर में हर शहर गांव में सेवा करते हैं। हम सदा अपनी पवित्रता, परमात्मा स्मृति और अपनी आत्मा स्थिति के साथ हर स्थान पर जाते हैं, तो जब हमारी दृष्टि में रूहानियत है तो और भी हमें उसी दृष्टि से देखेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल एक पूछ लीजिएगा, उसके बाद मुझे आया है कि अगर आप लोग लिख के दें, क्योंकि हम लोगों का ये लाइव जा रहा है तो कैमरा बराबर मूव नहीं हो पा रहा है, इसलिए अगर लिख के दें तो ज्यादा बेटर होगा। जी,
मेरा नाम पद्मा तोमर है, मैं खतौली जिला मुजफ्फरनगर से आई हूँ। मैं भारतीय योग संस्थान में सह क्लास प्रमुख हूँ। जो आप लोग ध्यान कराते हैं, थोड़ा बहुत जितना मुझे आता है मैं अपनी क्लास में जरूर कराती हूँ उसे। लेकिन एक बात है कि मेरे जो बच्चे हैं वो ज्यादा, एक तो मोबाइल से अटैच रहते हैं, और दूसरा मैंने उन्हें चारों बेटों को कोर्स कराया है, तो उसके जब उन्होंने कोर्स करा वो कहते हैं हाँ मम्मी ये बहुत अच्छा है। लेकिन जब वो बाहर के सर्कल में जाते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में, वहां से आने के बाद वो कुछ सवाल मुझसे करते हैं, कहते हैं कि इसमें शादी नहीं करते, इसमें ऐसा नहीं करते, हम नहीं जाया करेंगे। एक तो आप मुझे बताएं इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, दूसरा सबसे पहले हमारा परिवार ही हमारे पड़ोस के लिए एग्जाम्पल बनता है। मैं गीता पाठशाला खोलना चाहती हूँ, पर मैं चाहती हूँ सबसे पहले चेंजेस मेरे फैमिली में और मेरे बच्चों में आए। हम दोनों युगल जुड़े हुए हैं 5 साल से, और बहुत सारे बाबा की आशीर्वाद से हमारी ऐसी ऐसी समस्याओं का समाधान हो गया जो शायद कभी पॉसिबल नहीं था।
बेहतरीन सवाल, बहुत बहुत अच्छा सवाल है। मैं समझता हूँ कि दीदी आप बता दीजिए तो अच्छा है, क्योंकि
देखो बहन, आध्यात्मिकता कोई यूनिफॉर्म नहीं है जो हम सबको पहना दे। आध्यात्मिकता खुद समझनी होती है और अभ्यास में लानी होती है। इसलिए आप अपने जीवन की मालिक बन सकती हैं, बच्चों को आप गाइड कर सकती हैं, लेकिन वो अपेक्षा नहीं रख सकती कि वो सुधरे और वो ऐसे बने फिर मैं और सेवा करूं। नहीं, आप आदर्श बन के रहिए, उनको हर कदम आपका जीवन अंदर से जागृत करता रहता है, और आप अनेकों की सेवा के निमित्त बनेंगे। यहाँ शादी नहीं करना ये बात नहीं है, जीवन पवित्र योगी बनाना ये लक्ष्य है।
धन्यवाद,
थैंक यू। अगला सवाल आप लिख के दी तो ज्यादा बेटर होगा, एक दे दीजिए माइक, लेकिन लिख के दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। माइक दे, जब पूछिए आप जी, आप पूछिए।
नमस्कार, ये पहली बार ही आई मैं, मेरे को इतना हिंदी नहीं आते, मगर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते हैं मेरे को?
पूछिए पूछिए।
आप पॉलिटिकल लीडर्स को एथिक्स वैल्यूज बोले तो और अच्छा क्या सोसाइटी में अच्छा बनते हैं। मैं भी एक पॉलिटिकल लीडर के डॉटर हूँ, मगर वो पॉलिटिकल लीडर अच्छा है तो सब देखते रहते उनको देख के अच्छा, और मैडम बोले जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट को भी एथिक्स है तो सोसाइटी अच्छा होता। ये आप नहीं, आप उन लोगों को एथिक्स और वैल्यूज और आध्यात्मिकता बोले तो एक जने चेंज हुए तो भी सोसाइटी में अच्छा रहता। मैं ये एक आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपको मैं बता दूं कि हमारे जो सम्मेलन होते हैं उसमें हर वर्ग का होता है, राजनीति का, साइंस का, मीडिया का, पॉलिटिकल जो भी हैं, सभी वर्गों का इस तरह का सम्मेलन होता है कि कहीं ना कहीं ज्ञान कुछ आए और लोगों में जीवन में बदलाव हो, उसका प्रयास जारी है। मैं समझता हूँ कि आपके ऊपर सारा सवाल आया है, आप बताइए।
पॉलिटिकल लीडर हो या मीडिया, आपने जो बोला है मैंने भी वही बात बोली थी कि हर हालत में हर चीज का इलाज आध्यात्मिकता ही है। मैंने ये पहले भी बोला था, क्योंकि लीडर की जो छाप है वो पब्लिक पे पड़ती है और वो उसको ऐसा मानता है। जैसे छोटा सा उदाहरण दूं, मोदी जी, नरेंद्र मोदी, अब हर आदमी ये बीजेपी को कोई इतना नहीं मानता, क्यों मानता है? क्योंकि मोदी जी को मानता है, ठीक है। तो मोदी जी अपनी छाप जो समाज के सामने दे रहे हैं ना, वही छाप सब जगह जा रही है। तो ये तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि लीडर अगर बहुत अच्छा होगा, वो जो अपने मूल्यों की बात चल रही है, मैं उस मूल्यों की बात कर रही हूँ, वो चाहे आध्यात्मिकता के मूल्य हो, चाहे सामाजिक मूल्य हो, नैतिक मूल्य हो, और स्पेशली चरित्र, अगर वो ऐसे मूल्य हैं, फिर वो मीडिया हो। तो मैंने मीडिया के लिए भी बोला था, मीडिया के ऊपर ये जिम्मेवारी होती ही है कि वो अपने समाज की छाप कैसी सामने प्रदर्शित करेगा, वही समाज बाहर वाले लोग देखेंगे और उसको अपनाएंगे। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ।
ऐसे नहीं मैडम, आप आके हर डिस्ट्रिक्ट में एक बार आप मीडिया को, जर्नलिस्ट को काउंसलिंग करे तो अच्छा होता।
मैं बिल्कुल सहमत हूँ, मैं लाइव न्यूज में चीफ एडिटर हूँ, सारा कवरेज लेती हूँ मैं।
पर मुझे
आप करिए ऐसा कोई भी काम करिए, मैं पूरा कवरेज लेके ऑल वर्ल्ड में दे दूँ।
मंजिल जी, मैं ये आपसे कह रहा हूँ वो तो ठीक है जर्नलिस्ट आके बताएगा पॉलिटिकल बताएंगे, लेकिन अपने घर में चिराग कौन जलाएगा, ये भी तो जरूरी है।
अपना घर मतलब
अपने घर में जो हमारे बच्चे हैं, परिवार के लोग हैं, वहाँ
है, वो तो मैंने पहला दर्जा दिया है ना। मैं पहले ही बोली थी कि स्त्री और माँ पहले खुद में चेंज लाए, तब उनके बच्चे उस लाइन पे चलेंगे, वो बच्चे जहाँ जाएंगे वो वही प्रकाश मार जाएगा।
पूरा का पूरा जो आज का डिबेट है कहीं ना कहीं उसी से केंद्रित है।
बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो ये बात अपनी जो मैं बोली थी ना उसमें पहली बार ये रखी भी थी।
आप बताइए।
ओम शांति, मैं दीपक देशमुख पुणे से हूँ। मेरा क्वेश्चन डॉक्टर किरण मैडम से है। मैम, आपने अभी जस्ट जिक्र किया कि 80% लोग साइकोसोमेटिक डिसीज के शिकार हो रहे हैं, इट्स वेरी एक्चुअली डेंजरस साइन और वरी की बात है। और ये जब तक पता नहीं चल जाता कि ये साइकोसोमेटिक डिसीज है, तब तक तो एक किसी पहले बार तो सोसाइटी इसको जैसे पागल बोलना चालू कर देते हैं या निग्लिजेंस इग्नोरेंस चालू हो जाता है। और जब हॉस्पिटलाइज होते हैं तब मेरा एक खुद का भी एक्सपीरियंस है, डॉक्टर लोग अगर जैसे बोलते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक, अगर साइकोसोमेटिक डिसीज है तो माइंड लेवल से ही उसको थोड़ा क्लियर करना है, वो ना कराते हुए सेडेटिंग ड्रग्स जैसे नींद की गोलियां वगैरह से देके उसको सिर्फ दबाया जाता है, और जब वो कंटिन्यू नहीं कर पाता कोई तो वो उसके बाद में होते अरे इसके ऊपर कुछ असर नहीं हो रहा है, उसको पागल डिक्लेयर किया जाता है। तो मेरा एक जस्ट एक क्वेश्चन, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेडिकल एसोसिएशन से अटैच हो तो ये क्यों ना मेडिकल साइंस में, या फिर अगर ब्रह्म कुमारी से है तो ये अर्ली स्टेजेस से, जैसे अगर माइंड से अगर कुछ हो सकता है तो इसको हम लोग पहले ये नहीं करा।
थैंक यू डॉक्टर साहब। मेरा इसी के साथ में मैं एक सवाल और इंक्लूड करना चाहता हूँ जो लगातार सबको इसकी जरूरत है। पहली बात की हम लोग बात कर रहे हैं, अभी मेडिटेशन की बात उठी, अभी मूल्य की बात उठी, स्पिरिचुअलिटी की बात उठी। मैं चाहता हूं कि ये जो मन की स्थितियां जो विचलित पैदा होती हैं, पहले तो हमें ये आप ये क्लियर कर दीजिए कि एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी है क्या, और दूसरा कि मूल्य है क्या। क्योंकि जब तक इंसान को यह क्लैरिफाई नहीं होगा, ये पक्का पता नहीं होगा, तब तक तो आदमी इसी उधेड़ बुन में घूम रहा है और दवाइयां भी खा रहा है, योग भी कर रहा है, मेडिटेशन भी कर रहा है, एक्सरसाइज भी कर रहा है, फिर भी इस तरह की तादाद जो बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं मिसिंग लिंक तो है। इन दोनों चीजों को आप मुझे लगता है कि जोड़ के आपको बताना चाहिए ताकि लोगों से तस्वीर साफ हो इस मामले में।
बिल्कुल ठीक कहा आपने कोमल भाई, और आपका भी जवाब बड़ा, आपका क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है
जी।
वास्तव में मनोवैज्ञानिक वर्ड है ये, मनो मन मतलब हमारा मन, माइंड है ना। आप कॉमन वर्ड यूज करते हैं, मेरा मन आज ठीक नहीं है, माय माइंड इज डिस्टर्ब, और ये भी यूज करते हैं प्लीज माइंड माय वर्ड्स। इसका मतलब जो माइंड है वो हमारी रिसीविंग पावर है। कहाँ से रिसीव हो रही है? बॉडी से। तो ये बॉडी और पूरा स्पिरिट मतलब आत्मा है ना, ये हमारा फर्स्ट लेसन जो राजयोगा मेडिटेशन का है। बॉडी के ऊपर कितनी ज्यादा रिसर्चेस है आप देखिए तो सही, पूरी साइंस मेडिकल साइंस बॉडी, एक आंख के अंदर आंख की पुतली की अलग स्पेशलिटी, आंख की बाहर की कॉर्निया की अलग, मतलब हर पार्ट का कितना डिटेल्स है। और आत्मा के ऊपर कोई डिटेल्स है आपके पास? मन के ऊपर कोई डिटेल्स है? अगर मन खुश तो आप भोजन कितना भी खा लेंगे, अगर मन परेशान तो वही भोजन भूख लगी है कहेंगे भूख नहीं है। सो मन का कितना जबरदस्त रोल है और मन कैसे आत्मा का हिस्सा है, ये हमारे राजयोग का पहला सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है। और अगर फर्स्ट लेसन समझ आ गया तो नेक्स्ट लेसन समझ आएगा। यहाँ बहुत लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने किया है कोर्स, जैसे मैडम ने भी कहा हमने किया हुआ है, आज सुबह भी हुआ है। तो जिस तरह से बॉडी के 5 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ऐसे आत्मा को भी 7 चीजों की रिक्वायरमेंट है। सुख शांति प्रेम आनंद शक्ति ज्ञान पवित्रता। ज्ञान हम ले रहे हैं उससे प्योरिटी कितनी आई है, दैट इज आवर वैल्यू। ज्ञान सबने लिया है, कोई किसी गुरु से ले रहा है, कोई किसी मंदिर से, सब जगह से ज्ञान ही ज्ञान है। और लोग ऐसे लोगों को ज्ञानी जी भी कहते हैं, पर ज्ञान से मेरे जीवन में प्योरिटी की वैल्यू कितनी आई है, और इतनी वैल्यू आ गई है जो एम्पावर कर रही है दूसरों को, बच्चों को भी। दिस इज वट इज बेसिकली मूल्य, दिस इज बेसिकली मूल्य, कि मैं उसको मूल्य देता हूँ क्या, मैं उसको वैल्यू देता हूँ कि कुछ भी हो जाए पर मेरी आत्मा की पवित्रता भंग ना हो। दिस इज वट इज यू वैल्यू योर इनर प्योरिटी। वो नॉलेज तक तो है पर इस प्रैक्टिकल लेवल में वो नहीं पहुंची है। दैट्स व्हाई वी नीड टू हैव स्पिरिचुअलिटी। फिर स्पिरिचुअलिटी के ऊपर जब हम परमात्मा से शक्ति लेते हैं तो वो मेरी वैल्यू मेरे अंदर चिपक जाती है, क्योंकि पावर से परिवर्तन आता है, बिना पावर के परिवर्तन नहीं आएगा। दैट्स व्हाई गॉड्स पावर इज रिक्वायर्ड। और फिर जीवन में प्योरिटी आ जाती है तो हर चीज की, मन भी प्योर, बुद्धि भी प्योर, हमारा आचरण भी प्योर, सब कुछ प्योर हो जाता है, एंड दैट पावर गोज टू एवरीबॉडी। दैट इज व्हाट इज वैल्यू सिस्टम।
थैंक यू जी।
ओम शांति। मैं नेपाल से आया हूँ, मेरे नाम नीरू रायमा जी है। मैं एक हिंदी तो उतना अच्छा नहीं आता है,
अच्छा बोल रहे हैं,
थोड़ा सा मैं लिख कर पढ़ रहा है।
हाँ।
ये ब्रह्मा कुमारी राजयोग में परम पिता ब्रह्मा बाबा को मानते हैं, पर मैंने सब कुमार कुमारियों के लक्ष्मी नारायण के व्यास लगाया हुआ है दिखा है, परंतु बाबा के व्यास क्यों नहीं लगाता है हमको जिज्ञासा।
शुक्रिया, बहुत बढ़िया सवाल। देखिए असली जर्नलिस्ट है, उसमें मैं मुझे लगता है कि आप दीदी आप बता दीजिए।
अगर आप बैज को, हमारे बैज को ध्यान से देखेंगे तो लक्ष्मी नारायण के ऊपर ज्योति बिंदु शिव बाबा का चित्र है, कि लक्ष्मी नारायण बनना हमारे जीवन का लक्ष्य है, कि हमें मनुष्य से देवता बनना है और ऐसा बनाने वाला परमात्मा है, तो इसलिए वो ज्योति बिंदु परमात्मा का चित्र इसमें है। बाकी जहाँ तक ब्रह्मा बाबा की बात है, वो हमारे आदर्श हैं, उदाहरण हैं, हमें उसको प्रैक्टिकल फॉलो करना है। अगर वो चित्र रखते हैं तो लोग समझते हैं कि ये गुरु है इनका, तो वो सेंस हम नहीं लाना चाहते हैं। हम मूल चीज लोगों को सिखाना चाहते हैं कि परमात्मा परम सतगुरु है और वो हमें मनुष्य से देवता बना रहा है।
शुक्रिया। अगला सवाल।
ओम शांति। मेरा नाम विक्रम है। मैं ये मानता हूँ कि जितने पहाड़ हैं इनसे 100 गुना बड़े पहाड़ों से आया हूँ नेपाल से।
सवाल
की मेरा सौभाग्य है कि यहाँ साइंटिस्ट बैठे हैं, पॉलिटिशियन बैठे हैं, आध्यात्मिक चेतना देने वाली माता जी बैठी है, मीडिया से जुड़े लोग बैठे हैं। मुझे जहाँ तक ज्ञान है, मुझे जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है, उसे लगता है कि पाश्चात्य दर्शन से कई गुना अच्छा हमारा पूर्वीय दर्शन है। मैं हिंदू हूँ, यहाँ और भी लोग होंगे, और भी धर्म के लोग होंगे, बुद्धिस्ट दर्शन कई अच्छा है,
सवाल
सांख्य दर्शन कई अच्छा है, मगर यहाँ दुविधा कहाँ पर आ गई है कि अभी के समाज में, हमारे भारतवर्ष के सामाजिक सांस्कृतिक समाज में, विश्व में इसका असर स्पिरिचुअलिटी के लिए, इसको ट्रांसफॉर्म, वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन में इसका तो थोड़ा बड़ा रोल तो है, मगर हमको ऐसी दुविधा में डाल दिया है इन बाबाओं ने, गुरुओं ने, कि एक हाथ इधर से पकड़ता है, एक हाथ उधर से पकड़ता है, कोई पैर पकड़ता है, कोई गर्दन पकड़ता है, और ये बाबा और गुरुओं पार्टी के झंडे पकड़कर हमें कभी इधर ले जाते हैं, कभी उधर ले जाते हैं, धर्म को भड़का रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी को भड़का रहे हैं, इस पर आप लोगों का क्या नजरिया
है? शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ, हाँ दीदी से मैं बात करूंगा, और मैं दीदी एक बात और मैं इसमें शामिल करना चाहता हूँ कि जिसमें तमाम जो लोग बैठे हैं सभा में, हर कोई अपने बच्चों परिवार के साथ प्रारंभिक दिनचर्या तय करता है, उसकी मानसिक स्तर प्रारंभ मॉर्निंग से ही शुरू हो जाती है, रात तक चलती है, और जो तमाम जो उतार चढ़ाव है ये पूरे दिन भर के घटनाक्रम में होता है। तो आप ये सवाल का जवाब तो दीजिए ही, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इस सवाल का जवाब भी देना चाहिए कि आदमी आकर सुबह से अपनी दिनचर्या की सोच के साथ शुरू कर ले, ताकि जो चीजें आती हैं उसको बहुत अच्छे से नहा को खे करके बाहर लेकर निकल चला जाए। जी,
आपकी बात सही है कि मनुष्य शुरू से सत्य की खोज में रहा है, हरेक ने अपनी अपनी साधना अनुसार, अपनी समाधि की स्थिति अनुसार, जहां तक जिसने ईश्वर के बारे में, आत्मा के बारे में, सत्य के बारे में जैसा जिसने सोचा, समझा, अनुभव किया, वो विचार हमारे सामने रखे हैं। उसी का परिणाम है कि आज अनेक मते हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक संप्रदाय हैं, और ताकि इसलिए मनुष्य मूंझ गया है कि आखिर सत्य क्या है। तभी तो परमात्मा सृष्टि पर आए हैं और वे आकर हमें सभी धर्मों, ग्रंथों, शास्त्रों का सार आध्यात्मिकता बता रहे हैं, उन मूल सत्यों पर प्रकाश डाल रहे हैं। सत्य की यही पहचान है कि सत्य से आत्मा में जागृति आती है, शक्ति आती है, और इससे हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। अगर हम दवाई ले रहे हैं और बीमारी दूर नहीं हो रही है, तो हमें खुद विवेक से सोचना होगा कि हमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। जिस प्रकार से धर्म की बातें हमारे सामने रखी जाती हैं और जो क्रियाकांड हमें सिखाए जा रहे हैं, अगर इससे हमारे संस्कार में, स्वभाव में, कर्म में परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि सत्य और कुछ है। जिस सत्य को आचरण में लाने से लाखों लोगों का जीवन पवित्र बन सकता हो, उनके व्यसनों की गंदी आदतें छूट सकती हो, उनके जीवन में अच्छे गुणों की धारणा होती हो, तो वो सत्य की पहचान है। और उसको हमें और कोई खिंचाव में न जाकर उसी के अध्ययन में जाना चाहिए। इसलिए आध्यात्मिकता और योग वो साइंस है जिसको आप अभ्यास में लाओ और अनुभव करो, तो आपको कोई मूंझ नहीं होगी, आप कहीं भी मिसगाइड नहीं होंगे, किसी के दबाव में कहीं भी आप खींचेंगे नहीं। बाकी जहां तक भाई ने बात कही, बात सही है। वास्तव में जीवन क्या है? आज और कल। अगर आज सफल है तो कल हमारा सफल होना ही है, और इसलिए इस विद्यालय में हमें यही सिखाया जाता है कि अगर जीवन को सफल करना है, आज को सफल करिए, और आज को सफल करना है तो अपने मॉर्निंग आवर्स को सफल करिए। सुबह सुबह बुद्धि में सत्य ज्ञान के विचारों का इनपुट करिए, ताकि मन और बुद्धि पर सत्य ज्ञान का एक ऐसा प्रभाव चढ़ जाए, तो दिन भर कैसी भी बातें सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, तो भी उसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए इस विद्यालय में हमें ये सिखाया जाता है, सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक का समय सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए है। योग करें, सत्य ज्ञान सुने और समझे, और एक ऐसा शक्तिशाली शुद्ध मन और बुद्धि अपना बना ले, ताकि दुनिया में कितनी भी विषम, विपरीत, विकृत बातें देखें, सुने, तो भी हम उसमें मिसगाइड ना हो जाएं, आकर्षित ना हो जाएं।
थैंक यू, शुक्रिया। और मुझे लगता है जी जी, आपका सवाल मैं पूछता हूँ। एक मुझे कहनी है कि मुझे लगता है कि देखिए, जो प्रवाह है दुनिया का, इसमें सारी चीजों का प्रवाह है। अब आपको इतना तो महसूस होता ही होगा कि अगर गर्म हवा में हम जा रहे हैं तो गर्मी महसूस हो रही है, और ठंडे हवा में जा रहे हैं तो ठंडी महसूस हो रही है। हर कोई अपने अपने तरीके से अच्छा करने की बात करता है, लेकिन कम से कम प्रैक्टिकल तो आपको करना है। आप अगर गुड़ खाते हैं तो मीठे की अनुभूति आपको होती है, अगर आप तीखा खाते हैं तो आपको तीखे की अनुभूति होती है। तो कहीं ना कहीं इतना जस तो हमें कर ही लेना चाहिए कि अगर इस रास्ते पे हम चलेंगे तो हमारा रास्ता किधर जाएगा, ये हमारा सेल्फ डिसीजन है। और मुझे लगता है कि इसमें आपको कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए समाज में कि आपको कोई किधर ले जाए, ये आप उसके बागडोर में क्यों है। ये तो आपको तय करना पड़ेगा कि हम किधर जाना चाहते हैं, हम क्या सुनना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, क्योंकि उससे आपकी जिंदगी प्रभावित है, आपके परिवार की जिंदगी प्रभावित है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इस पर सेल्फ डिसीजन आप सबका होना चाहिए। जी, अगला सवाल।
ओम शांति। मैं डॉक्टर संजुक्ता साह, नेपाल से आई हूँ। मेरा एक सवाल है कि इतना क्लास में हम लोग सीखे कि नारी का रोल, नारी की भूमिका विश्व परिवर्तन के लिए जरूरी है। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उस सोसाइटी में गरीबी सबसे बड़ी बीमारी है। गरीबी के कारण या फीमेल एजुकेशन कमी के कारण दो बेटियां हो गई या तीन बेटियां हो गई, चौथे में किसी का हस्बैंड उसको प्रेशर डालता है, उसकी वाइफ नहीं चाहती है बच्चा हटाना, हस्बैंड या उसका पूरा फैमिली, सास पूरे फैमिली के लोग उसको प्रेशर डालते हैं। तो इसमें लेडीज कैसे उसको कंट्रोल करें, एक सवाल
जी।
और एक दूसरा सवाल, डोमेस्टिक वायलेंस, ये दो सवाल का आंसर हमको चाहिए।
थैंक यू। मुझे लगता है कि आप बताएंगे डोमेस्टिक।
बहन, बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल है। पहली कोशिश आप ये कीजिए कि अपने हस्बैंड को, अपने फैमिली को, अपने इन-लॉज को दो या सौ से अधिक दो बार समझाएं या फिर सौ बार समझाएं और सौ से अधिक बार भी समझाएं। और अगर वो उसके बाद भी कोई भी बहन या कोई भी महिला पर किसी प्रकार का दबाव डालते हैं, प्रेशर बनाते हैं, तो प्लीज कानून की हेल्प ले। कानून सिर्फ और सिर्फ वुमन्स की हेल्प के लिए बना है। आप अपने नियर जो भी थाना पड़ता हो या जो कोई महिला हो, इस वक्त में आप ये कहेंगी कि मैं किसका सपोर्ट लूं, आप अपने मायके का सपोर्ट ले, क्योंकि हमारा जीवन साथी सबसे अहम कड़ी होता है एक महिला के लिए, हमारा हस्बैंड। पहली कोशिश आप करें अपने हस्बैंड को समझाएं, बहुत बार समझाएं, अधिक बार समझाएं। अगर उसके बाद भी वो नहीं मानते हैं तो हमारे बीच, हमारे अंदर जो जीव पल रहा है उससे बड़ा कोई पाप और कोई पुण्य नहीं है। वो सबसे बड़ा पुण्य है अगर आप उसकी जान बचा लेती हैं। उसके लिए आपको चाहे कानून की कटेरी में खड़ा होना पड़े, चाहे आपको समाज में जाना पड़े, चाहे आपको कहीं भी निकलना पड़े, उस वक्त आप अपनी हेल्थ की और अपने आप की परवाह करें, ना कि समाज की परवाह करें।
थैंक यू।
एक्सक्यूज मी, ये आप ही के प्रश्न को मैं दोहराना चाह रही हूँ। उन्होंने एक प्रश्न और पूछा था कि गरीबी के कारण दो लड़कियां हो गई, तीन लड़कियां हो गई और शायद आगे भी प्रेशराइज्ड हो रहे हैं, तो ये जो गरीबी वाली जो समस्या वो पूछ रही है, इसका भी इलाज वो जानना चाह रही है।
मैं ये तो नहीं कह सकती कि हर वुमन 50,000 या 1,00,000 रुपए की जॉब कर सकती है, लेकिन मेरी सोच और समझ के मुताबिक अभी जो मैं गवर्नमेंट को बीच में नहीं लाऊंगी इसमें, ना बीजेपी को, ना कांग्रेस को, ना अदर किसी पार्टी को,
मंच भी नहीं है वो।
बट नहीं, बिल्कुल ये कोई बात नहीं है। मैंने मोदी जी के लिए खुद क्लैपिंग करके समर्थन किया था, क्योंकि मैं पार्टी के साथ नहीं हूँ, सच्चाई के और सत्यता के साथ हूँ। मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ तो इसलिए ये कोई बात नहीं होती है। लेकिन मैं आपको कहती हूँ बहन जी, हमारे जब एक बेटी होती है या एक बेटा होता है, वो ये नहीं कहता है कि मम्मी आप मुझे 1 करोड़ रुपए से पालो। वो सिर्फ ये कहता है कि माँ आप मुझे जैसी भी, बाबा ने ज्ञान में कहा है जीने के लिए पाव भर आटा सिर्फ अधिक जरूरत है। पाव भर आटे की सबसे पहली जरूरत है, दूसरी जरूरत शिक्षा की है। शिक्षा बहन जी एनजीओ में भी ली जा सकती है, शिक्षा बहन जी नॉर्मल स्कूल्स में, सरकारी स्कूल में भी ली जा सकती है, और शिक्षा बहुत बड़े ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी ली जा सकती है। एजुकेशन एजुकेशन है, आप उसे अच्छा संस्कार दें और आप खुद या कोई भी महिला एक छोटे से छोटा काम करें, अपने घर से ही कोई काम की स्टार्टिंग करें, छोटी सिलाई करें, कुछ और करें। आजकल कई तरीके के उद्योग चल गए हैं, हम कई तरीके के कर्म कर सकते हैं, कर्म करके कमा के हम अपने बच्चों को पाल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ जब तक वो थोड़ा बड़ा ना हो जाए, उसके बाद एक दिन वो आपका सहारा खुद बनेगा और उसी पिता, उसी परिवार, उन्हीं इन-लॉज को एक बहुत बड़ा मुंह तोड़ थप्पड़ देगा तब। और धीरे धीरे आपको मैं और बताऊं, ये समस्या भी अब कम होती जा रही है। मैं राजस्थान से हूं, मेरे यहां बेटे का होना किसी समय तक एक अभिशाप माना जाता था, बेटियों को जला दिया जाता था, गाड़ दिया जाता था, होते ही खत्म कर दिया जाता था। आज हमारे यहाँ, मैं राजपूत फैमिली से हूँ, आज मैं आप लोगों के साथ यहाँ बैठी हूँ और मैं वर्क करती हूँ, इसलिए अगर बहुत कम हो गया है, धीरे धीरे सत्य की खोज हो रही है, बाबा आए हैं अपने जीवन में, ज्ञान आया है, ज्ञान से बहुत कुछ ठीक होगा। संयम रखें, नियंत्रण, धीरे धीरे स्थिति सही होगी।
आपने जो प्रश्न पूछा, आपकी गरीबी का मैं एक जवाब और देना चाह रही हूँ।
सर आप बैठिए, क्योंकि और लोगों को चांस दीजिए प्लीज, बाद में डिस्कस कर लेंगे।
कन्याओं के लिए हमारी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं निकाल रखी हैं, क्या आपको पता है उनका? नहीं, शायद, मुझे लगता है नहीं। आप एक बार जाके किसी से भी
किसी एनजीओ से या किसी से भी कहीं किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाके आप ये पता कीजिए, अपनी लड़कियों के लिए स्पेशली बहुत सारी योजनाएं अभी चल रही हैं गरीबी के ऊपर। आप अच्छा नेपाल से हैं तो भी है तो सब जगह ही होगा, वो तो मालूम तो हो गई। नहीं नहीं है तो भी आपको हम बता देंगे, अगर नहीं पता चले कहीं से भी नहीं चले तो वो आधी समस्या तो वहीं खत्म हो जाएगी। उसका लाभ बहुत सारी महिलाएं उठा रही हैं, लेकिन शिक्षा का होना जरूरी है। अगर आपको पास शिक्षा है तो ही आप ये वो योजनाओं को जान सकेंगे कि हम कहाँ जाके ये सब पता करें। ठीक है,
मेरे विचार से लगता है कि फीमेल को तो वाइफ जो रहती है उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर होता है।
मैं आपके सवाल से बिल्कुल वाकिफ हूँ और हो गया। और दूसरा ये है कि जो मूल्य की बात हो रही है, जो स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है, अच्छे मूल्य जो होते हैं वो आप दुनिया के किसी कोने में भी चले जाइए तो इंसान को हमेशा जिंदा, और जो लोग जंगलों में भगवान के नाम पे चले जाते हैं उनकी भी भगवान परवरिश कर लेता है। आप तो लोगों के बीच में रह रही हैं तो निश्चित तौर पे आपके जो अच्छे मूल्य हैं, अच्छे संस्कार हैं, आप किसी भी सोसाइटी में रहिएगा, तमाम सरकारी योजनाएं चाहे नेपाल हो या भारत हो या और भी किसी देश हो, आज इतनी दुनिया अवेयर हो गई है कि बेटों बेटियों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं रह गया, तो जो योजनाएं बेटों के लिए चल रही हैं बेटियों के लिए भी हैं, तो जरूर आप इस बारे में और अपने बच्चों को पढ़ाएं, निश्चित तौर पे आपकी ये जो सारी समस्या है दूर होगी। और आजकल किसी के दबाने और कहने से बहुत ज्यादा मायने नहीं रह गया है। थैंक यू, मुझे लगता है। और मेडिटेशन भी कर लीजिएगा और अच्छी मदद मिल जाएगी। अगला सवाल किसी का हो। मैं जब तक सवाल आता है तब तक मैं आप लोगों से एक सवाल मैं करता हूं। मैं ये चाहता हूं कि जो आज पूरा डिबेट चल रहा है और जिस विषय पे आके केंद्रित हो रहा है, कहीं से आया है कि जो बहुत सारे ज्ञान की बाढ़, दूसरी चीज आए कि गरीबी, एजुकेशन, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि भारत देश आज अमेरिका में आप जानती होगी कि 37 या 40% जो डॉक्टर्स और इंजीनियर भारत के लोग हैं। आज दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पे भारत के ज्ञान की पराकाष्ठा नहीं है, लेकिन जिस ज्ञान की हम बात करना चाह रहे हैं, जिस ज्ञान की हम बात को उठाना चाह रहे हैं, जिसके कारण हम पीछे जा रहे हैं, आखिर में उसकी नींव कहां से रखी जाएगी, कैसे होगा ये सब, क्योंकि आज सारी जो प्रॉब्लम है वहां से क्रिएट हो रही है। जी
ये बात की जो निचोड़ निकला बहुत अच्छा, कि वास्तव में गरीबी कहां है। गरीबी को कहते हैं कमी। कमी मतलब जिस चीज की जरूरत है उसकी आपको कमी है। आज पैसे की जरूरत है तो कहा गया गरीबी है, ठीक बात है ना? और समाज में किस चीज की कमी है? गरीबी लाइन के नीचे कितने लोग आते हैं? 80% इंडिया में। और शांति की कमी में नीचे कितने लोग आते हैं? जवाब दीजिए। शांति 80% को कम है या 100% को कम है? 100%। अच्छा, पवित्रता, प्योरिटी, सत्य, हमें सत्य की समझ, ज्ञान की समझ कितने लोगों को है? 80%, 90%, 100%। हम राइट डिसीजन ही नहीं ले पाते, चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं, जो राइट डिसीजन है वो नहीं ले पाते। वास्तव में गरीबी है आध्यात्मिक मूल्यों की। ये बात बिल्कुल सच है और 100% सच है और अजमाई हुई है। सुख ना होने का कारण यही है, हर वक्त दुख होते रहना, क्योंकि मन में उस दुख वाली बात को बसा लिया है। तो इतने सारे सुख होते हुए भी एक कमी के कारण हम टोटली दुखी रहते हैं, अशांत रहते हैं, परेशान रहते हैं और राइट डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आध्यात्मिकता और उसके द्वारा जीवन में वैल्यूज को ले आएंगे। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके घर में खाने को नहीं था, आज उन्होंने जब राजयोग सीखा, बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं, खुद काम करना शुरू किया, फैक्ट्री में डबिया लगाने शुरू की, हस्बैंड शराबी, 80% जहां गरीबी है वो आदमी लोग ड्रिंक करते हैं, औरत का लिया हुआ पैसा कमाने का वो भी खींच ले जाते हैं, औरत की पिटाई भी करते हैं। पर आध्यात्मिकता उसके साथ ये जो ब्रह्मा कुमारी में राजयोग सिखाया जाता है, वो राजयोग ऐसा योग है जो सब पर राज्य करता है, मन पे भी करता है और दूसरे को मन को परिवर्तन कर देता है। और जो वही परिवारों में आदमी भी काम करते हैं, उन्होंने ऐसा शराब का या तंबाकू का सेवन भी खत्म कर दिया है। सिर्फ हुआ क्या है, सिर्फ एक व्यक्ति भी घर के अंदर अगर राजयोग का सही अभ्यास कर आप करके देख लीजिए, 40 दिन लगातार सुबह 4 बजे उठ के आधा घंटा योग में बैठिए, कोई ख्याल नहीं आए, सेकंड भी आपका इधर से उधर नहीं हुए, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आपके परिवार में परिवर्तन आएगा। जब रेकी दूसरे को ठीक कर सकती है तो परमात्मा की शक्ति क्या हमारे परिवार को ठीक नहीं कर सकती? गरीबी नाम की कोई चीज ही नहीं है अगर आध्यात्मिक मूल्य है तो।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपसे ही संबंधित एक सवाल है और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया है, मुझे लगता है कि आपको अच्छे से और बताना चाहिए इसमें। इसमें दो सवाल ज्योति जी ने किया है, MSc है मेडिकल साइंस में। एक तो इनका कहना है कि वैज्ञानिक परमात्मा को एक बड़ा अणु मानते हैं और उसका नाम हिंग्स बोसोन बताते हैं, वो मानते हैं कि जारी सृष्टि उसी अणु से बनी है, इसके लिए उन्होंने बड़ी मशीन भी बनाई है जिससे अणु को ढूंढा जाए, क्या वो उचित कर रहे हैं, क्या वो परमात्मा को ढूंढ पाएंगे या नहीं, पहला सवाल। और दूसरा सवाल आपके बैकग्राउंड से है कि अगर होम्योपैथी में बीमारी को जड़ से खत्म करने की दवा है तो इसके लिए थायराइड या बीपी की दवाई हमेशा क्यों खिलाई जाती है, अगर नहीं है तो इसकी दवाई क्यों नहीं खिलाई जाती है, और है तो क्यों नहीं, ये दोनों सवाल आप बताइए।
देखिए बात यह है, अगर हमने राजयोगा के सारे लेसन किए हैं, सारे लेसन A to Z, और हम यहाँ के रेगुलर स्टूडेंट बन जाते हैं, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात सिखाई जा रही है, जो 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 प्रयास कर रहा है समय अनुसार आवश्यकता अनुसार वो सही है, और उनको वो करने में रोकथाम नहीं करने दीजिए, अल्टीमेटली वो सब प्रयास कर लेंगे तो अल्टीमेटली सत्य की खोज के लिए वो जरूर पहुंचेंगे। और यहाँ पे भी ऐसे ऐसे लोग पहुंचे हैं जो बहुत जगह ढूंढ ढूंढ के अल्टीमेटली लास्ट, उनकी बाबा भी कहते हैं यही हट्टी है जिसके द्वारा गति और सदगति होगी। तो जरूर है कि राजयोगा मेडिटेशन के बाद आप रेगुलर क्लासेस में जाइए और वहाँ पे ज्ञान और योग का अभ्यास करिए और जीवन में परिवर्तन लाइए, वो स्वयं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके होगा। दैट इज द आंसर टू फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, बाकी दवाइयों की बात जब आती है, एक है शरीर एक है आत्मा, आत्मा और शरीर दोनों कंबाइंड होकर काम करते हैं। अगर कमी, क्योंकि कुछ एरिया में थायराइड डिजीज है वो इसलिए है कि आयोडीन की वहां के पानी में कमी है, तो कोशिश करके आयोडाइज सॉल्ट भी बनाए गए, पर फिर भी अगर बॉडी में कमी आ जाती है, बॉडी तो सिस्टम है एलिमेंट्स का, और एलिमेंट्स के सिस्टम में कोई कमी आती है तो दवाई लेना बहुत जरूरी है। दवाई के लिए किसी भी बात की मना नहीं है, परंतु बीमारी का मन पे शिकार हो जाना और उसके अंदर हमारी परफॉर्मेंस में चेंज आ जाना और हमारे मनोवैज्ञानिक तरीके से उसका इफेक्ट आ जाना, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रह्मा कुमारीज में ऐसे भी लोग हैं जो कैंसर के मरीज होते हुए भी इतनी एक्टिविटी किया, लास्ट डे तक उन्होंने सेवा की, क्योंकि उन्हें किसी भी बीमारी का असर कहीं भी नहीं आया है। इसलिए आत्मा की स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है, आप फिजिकल जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ दवाई लेना भी बहुत जरूरी है।
शुक्रिया। मैं ज्योति जी से एक सवाल जरूर मेरे तरफ से है कि अगर हम खुद को नहीं ढूंढ पाए हैं तो भगवान को ढूंढ पाना एक तो कहाँ से संभव है। तो जब तक इंसान की ही नहीं खोज हो पाई कि इंसान एक्चुअली है क्या, कोई कुछ बताता है कोई कुछ बताता है, तो परमात्मा को ढूंढ पाना कोई न कोई मशीन ब्रह्मांड उतार दें तो भी नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि खुद को ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं। इसके लिए मुझे लगता है कि अगर यह सवाल आपके मन में कौंध रहा है तो मैं आपसे जरूर गुजारिश करूंगा कि अगर अपनी जिंदगी के 2-4-5 दिन अगर आधे आधे घंटे निकाल के राजयोग मेडिटेशन सीख लीजिए, तो मुझे लगता है कि इन सवालों से संबंधित जितने सवाल होंगे सारे का उत्तर मिल जाएगा और आपकी जिंदगी का एक नया सवेरा होगा, आप जरूर कर लीजिएगा। और अगला सवाल है, विश्व परिवर्तन आध्यात्मिकता करते हुए, विश्व परिवर्तन आध्यात्मिकता से करते हुए कई बाधाएं आती हैं, उन्हें कैसे पार करें, आप बता दीजिए दीदी, क्योंकि आप तो बड़ा अध्यात्म बचपन से ही रही है, तो आपको कितनी बाधाएं आई जरा बताइए, उनका भी बाधा आ रही होगी उनके भी सामने। ये है योजना धरत वृक्षाश्रम संपादक ठाणे, संचालक है शायद, वृक्षाश्रम संचालक है आपके हैं, अब इनसे आप ये बताएंगे, क्योंकि इनको भी इसमें है लिंक, तो कहीं ना कहीं इनको भी बहुत आई होगी, तो मैं कहता हूँ कि आप ही बता दीजिए कि कौन कौन सी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है।
देखो, हर अच्छे कार्य में बाधाएं तो आएगी, कहते हैं शुभ कार्य में 100 विघ्न, क्योंकि समाज सत्य को प्रथम नजर में कभी भी स्वीकार नहीं करता है। इसलिए जो उस सत्य को नहीं समझ पाता है वो जरूर विरोध करेगा, विघ्न डालेगा, हमारा विरोध करेगा। लेकिन अगर हमारी बुद्धि में सत्य स्पष्ट है, अनुभव में है, और इससे हमने अपने अंदर में परिवर्तन लाया है, तो हम कोई भी विघ्न में कहीं भी अटकेंगे नहीं, बल्कि हमारे में उन विघ्नों का सामना करने की शक्ति हमारे में आ जाती है। विघ्न खुद के संस्कारों से भी खुद को आती है, परिवार से भी आती है, क्योंकि एक विचार को हर कोई नहीं स्वीकार करता है। हर एक की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपने अपनी जीवन पद्धतियां हैं, तो विरोध तो हर बात में होता है। लेकिन अगर मुझे स्पष्ट है कि ये सत्य है, कल्याणकारी है, और उसे आचरण में लाना जरूरी है, तो आप कहीं भी अटकेंगे नहीं, सफल होके ही रहेंगे।
और दूसरा ये है, आपने थोड़ा बहुत रामायण सीरियल उरियल देखा होगा, मैं समझता हूँ, जब आप एक आसुरी प्रवृत्तियों के संसार में जब आप गुजर रहे हैं अच्छी चीजों के लिए, तो वो तो आना ही है, लेकिन आपके पास कम से कम कवच कुंडल और ब्रह्मास्त्र तो है ही ना भगवान का और इस राजयोग मेडिटेशन का, निसंदेह उससे पार हो जाएंगे। और आप तक जो पार किया है, जो ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन ने, जो आप सोच सकती हैं कि दुनिया की एकमात्र यह ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी हेड सिर्फ बहने हैं, दुनिया की पहली संस्था है। लोग कोई अपने यहाँ केवल बात करते हैं कि कॉरपोरेट में बहनों को आगे देना चाहिए, आरक्षण देना चाहिए, लेकिन ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है कि 142-40 देशों में ब्रांड चला रही है, और सब जगह ऐसी बहनें हैं जो संस्था को चला रही हैं। तो आप सोच सकती हैं कि कितना बड़ा ओकेजन है और कितनी बड़ा लक्ष्य है, लेकिन राजयोग मेडिटेशन और परमात्मा का साथ है तो सब कुछ आसान है। आपको भी ऐसा ही होगा मैं उम्मीद करता हूँ। दीदी एक सवाल मेरे जो समझ में आ रहा है, मैं समझता हूँ कि इसमें जितने भी लोग बैठे हैं, जरा बताइएगा आप लोग कि जब आप लोग भोजन बनाते हैं और जब सोने जाते हैं, तो उस समय की जो आपकी स्थिति रहती है, आप कभी, आप सब लोग कभी गौर नहीं कीजिए किया होगा आपने, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग जिस टॉपिक पे आज बात कर रहे हैं, उस टॉपिक पे इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि हम लोगों के हर क्रियाकलाप, हर कर्म वो किस तरह के हों जो हमें लगातार इस तरह की परमात्मा की शक्ति और एक ऐसे ऊर्जा का संचार होता रहे कि अगर कोई भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे परिवार में, घर में, बच्चों में, नौकरी में, पेशा में अगर होता है, तो ये मूल्य और आध्यात्मिकता वहां पे हमारे साथ कवच कुंडल का काम करे। मैं चाहता हूं कि आप बता दीजिए इसमें कितना काम करता है ये।
अनुभव हम बहनों का तो यही है, और यहाँ आने वाली सभी ग्रस्त में रहने वाली माताओं, बहनों, कुमारियों का अनुभव यही है कि बातें तो हर क्षेत्र में आती है, ऊपर नीचाई होती है, हलचल के दौर से हम गुजर रहे हैं, लेकिन हमारे में जब आध्यात्मिक शक्ति है, परमात्मा से हमारा संबंध है, और हमारा अपना शुद्ध चरित्र है, तो ये बाधाएं हमें जरा भी हिला नहीं सकती है, कमजोर नहीं कर सकती है, शांत नहीं कर सकती है। हम ही कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है। जीवन में ऐसी कई चीजें हैं जो आप जिद करते हैं, हट करते हैं, और गलत होते हुए भी आप उसको पूरी करते हैं। फिर वो व्यसन है, फैशन है, फिल्में हैं, होटलों में खाने की आदत है, वहां तो गरीबी की कोई बात नहीं कर रहा है, वो भी तो हमारे व्यर्थ के खर्चे हैं, और वहां हम चाहना रखते हैं तो कहीं से भी पैसों का, समय का, संग का, कंपनी का जुगाड़ करके वो इच्छाएं पूरी करते हैं। आज मुझे फिल्म देखनी है तो वहाँ कहीं से भी मैं पैसा लाती हूँ और उसमें मुझे कंपनी भी मिल जाती है, समय भी मैं निकाल लेती। तो जब जीवन में अच्छी चीजें करनी है और खुद की इच्छा शक्तिशाली है तो हमें कोई बाधा नहीं रोक सकती। धन भी आ जाएगा, समय भी आ जाएगा और हमारे जैसा आचरण करने के पक्ष में रहने वाले लोगों का साथ भी हमें मिल जाएगा। हमें शुरुआत खुद के जीवन से करनी। जब हम अपने व्यक्तिगत जीवन में आध्यात्मिकता और मूल्यों को धारण करने में सफल रहते हैं और एक ऐसा व्यक्तित्व बना लेते हैं कि फिर हमसे कोई दूसरी बातें नहीं करेगा, हमारे व्यक्तित्व का प्रभाव ऐसा पड़ेगा कि लोग गलत बातें हमसे करेंगे ही नहीं और ना ही उस दिशा में ले जाने के लिए जबरदस्ती करेंगे। इसलिए और कुछ भी नहीं करिए, आप खुद अच्छी तरह जीवन में गुणों का महत्व समझिए। आज कमी मूल्यों की आ रही है और उसी के कारण सारे प्रॉब्लम हो रहे, और इन मूल्यों को जीवन में लाने का आधार आध्यात्मिकता है। जब तक ये दो चीज हम अच्छी रीति जीवन में नहीं लाएंगे, हमें हर चीज परेशान करेगी, हर बात में हम ऊपर नीचे होते रहेंगे। इसलिए हम खुद पहले वैल्यू समझें कि अच्छे चरित्र की, सद्गुणों की, सद्व्यवहार की जरूरत है या नहीं। ये आध्यात्मिकता एक्स्ट्रा चीज नहीं है, बूढ़े हो तब करें, टाइम हो तो करें, ये एक्स्ट्रा चीज नहीं है, आध्यात्मिकता ही जीवन है, ये हमें समझ में आ जाना चाहिए। तो सब कुछ हमारे पास है।
थैंक यू दीदी। अब हमारे पास एक सवाल आया है और हम लोग धीरे धीरे अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि 7:30 बजे हमको पूरा करना है, लेकिन जो 2-3 सवाल आए हैं लगभग एक ही तरह के हैं। इसमें पहले सवाल का जवाब तो मैं दे देता हूं, जो आपने लिखा है कि हम लोग पहली बार आए हैं यहां बाबा के घर में और हमने देखा है कि यहां सबसे ज्यादा गरीब और बाल विवाह होता है। राजस्थान की बात कर रहे होंगे आप, किसका सवाल है ये, नाम नहीं लिखा आपने, नागपुर से जो आए हैं। और उन्होंने कहा कि क्या इतने बड़े बाबा का स्थान है तो यहाँ के लोगों में परिवर्तन हो रहा जरूरी नहीं है क्या? आपको मैं बता दूं कि ये राजस्थान का दूसरा पिछड़ा इलाका है, ये सिरोही जिला, जहां पे आज भी ट्राइबल बेल्ट के लोग रहते हैं और सामाजिक कुरीतियां अपने चरम पे हैं। और बाबा के घर होने के कारण बहुत सारे परिवार के लोग ऐसे हैं जिनसे आप मिलेंगे तो शायद आपको लगेगा नहीं कि ये ट्राइबल बेल्ट के लोग हैं, इतना बड़ा परिवर्तन आया है, तो निश्चित तौर से बदलाव आया है। और दूसरा सवाल यह है कि इसी से संबंधित है कि मैं अध्यापिका हूं और हमारे जहां हम नौकरी करते हैं उसके आसपास औरतों बच्चियों की दयनीय स्थिति है। मैं चाहती हूं कि मैं अपने योगदान से उनमें सुधार लाना चाहती हूं, अपने आप में कॉन्फिडेंस लाना आवश्यक है, लेकिन कॉन्फिडेंस कैसे ला सकती हूं इसके लिए जरा बताइए, और आध्यात्मिकता से क्या कॉन्फिडेंस आ सकता है कि नहीं, समझ में नहीं आता, आप बता दीजिए। सब कहना इनका यह है कि मैं जो वर्क प्लेस पे काम करती हूँ वहां पे तमाम महिला और बच्चियों की दयनीय स्थिति है, लेकिन हम उनमें चेंज लाना चाहते हैं, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मैं कर पाऊंगी या नहीं, आध्यात्मिकता कितनी मदद करेगी?
आपको मैं सच्चाई बता दूं मेरे जीवन की, मैं एक बहुत शाई पर्सनालिटी थी, बहुत शाई, शायद मैंने किसी के आगे आज तक क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया था, और मेरे को जब क्वेश्चन राइटिंग में आता था तो 100% मार्क्स आते थे, और यहां तक कहते थे तुमको आता था तो बोले क्यों नहीं, क्योंकि कई व्यक्तियों के अंदर एक कॉम्प्लेक्स होता है जो पिछले संस्कारों का होता है जो हम यहाँ पे आके सीखते हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि क्या कमी थी मुझे किसी के आगे बोलने की, मैं नहीं जानती हूँ, पर जैसे जैसे मैंने राजयोग सीखा तो कॉन्फिडेंस क्या, हर पल पे ऐसा लगता है कि स्वयं भगवान बताता है जाओ वहां, जाओ वहां, बोल देना, आप नहीं बोलोगे मैं बोलूंगा, ऐसे वाली फीलिंग परमात्मा से आती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड गॉड कॉन्फिडेंस आ गया।
थैंक यू। एक खुशखबरी आप लोगों के लिए कि आज 9 से 10 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, इसके पहले भी एक दो सवाल और हैं, बात करेंगे, और वो बेटी बचाओ पे होगा, इसलिए आप लोग जरूर आइएगा उसमें। और इसमें जो अगला सवाल हमारे पास से आया है ये नेपाल के किसी का है कि श्रीमान और श्रीमती की जरूरत होती है, नहीं तो सीता मायके जैसे देश से निकाला करके। इनका कहना ये है कि वो रामायण की इन्होंने कहा है कि अगर श्रीमान श्रीमती की जरूरत है तो सीता को कैसे निकाला गया, ये रामायण का संदर्भ है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं आप लोग एक बात यह समझ लीजिए कि इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, आप लोग दो दिन से यहाँ पे आए हैं, आप लोगों ने खाने पीने रहने वहने की सारी व्यवस्था आप लोग देख रहे होंगे, क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि ये कैसे चल रहा है? क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ समझना चाहिए कि जो कुछ यहाँ पे चल रहा है वो सब परमात्मा की और राज्यों के ध्यान से चल रहा है। हमारे यहाँ बहने हैं, भाई हैं, हर जगह के लोग हैं। मैं गीता बहन से जानना चाहता हूँ, आप जरूर इन लोगों को बताइए कि ये सारा कार्य व्यवहार घर में भी होता है, लेकिन घर में इस तरह की स्थिति हो जाती है जो मैनेजेबल नहीं होती, यहाँ मैनेज कैसे होता है ये जरा बता दीजिए आप।
ऐसा है कि यहाँ जो कारोबार चल रहा है लाखों और वर्ष भर हजारों के ग्रुप एक के बाद प्रोग्राम चलते ही रहते हैं। नेचुरली कोई एक व्यक्ति से नहीं चलता है, सर्व के सहयोग से चल रहा है। अब जो जो जिस जिस सेवा विभाग से जुड़े हुए हैं, हरेक को अपने कर्तव्य की जागृति है और जो कार्य हम कर रहे हैं, जिस विद्यालय में हम रहते हैं, जिस महायज्ञ का ये कार्य चल रहा है, उसे हमें अपनापन इतना है कि हर एक दिल से कार्य करता है। तो जब हम दिल से कार्य करते हैं, अपना समझ कर करते हैं और अपने रोल की जागृति है कि मैं यहाँ किस लिए हूँ, तो जब हर व्यक्ति इस प्रकार से कार्य करेगा तो कितना भी बड़ा कार्य हो, कितनी बार भी हो, आसानी से वो मैनेज हो जाता है, सहज ही हम कर पाते।
एक सवाल भी है कि अगर परमात्मा संपूर्ण है, लोग कहते हैं कि परमात्मा संपूर्ण है तो साकार क्यों नहीं, निराकार क्यों है, इसका जवाब बता दीजिए आप।
देखो, जो शरीर में आता है वो कोई ना कोई लिमिट में बंधता है। प्रकृति के बंधन में जब आत्मा बंधती है तो वो एक लिमिटेशन में आ जाती है, पर जब आत्मा शरीर रहित हो जाती है तो उनकी एनर्जी अनलिमिटेड बन जाती है, क्योंकि शरीर को संभालने में और प्राकृतिक क्रियाओं के पीछे भी आपका ध्यान जाता है, समय जाता है, तो नेचुरली उतना कमी रहती है। इसलिए जितना हम निराकार बनते हैं उतनी हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ती है। यही कारण है कि परमात्मा परफेक्ट है, सदा परम है, क्योंकि वो इन सब प्राकृतिक बंधनों से मुक्त है।
एक अनाउंसमेंट है कि जिन लोगों को सौगात नहीं मिली है, कल सुबह क्लास के बाद वो मिलेगी, आप लोग जरूर ले लीजिएगा। और मैं एक चीज आप लोगों से कहना चाहता हूं, जितने लोग बैठे हैं, देखिए ऐसे संदर्भ और मौके बहुत आपकी जिंदगी में आए होंगे। आप लोग परिवार चलाते हैं, समाज में रहते हैं, प्रोफेशन में रहते हैं, पढ़ाई में रहते हैं, बहुत सारी चीजें रहती हैं, लेकिन जो चीज हमें लगातार परेशान करती है कि हम जो सोचते हैं हो नहीं पाता है, हम जो चाहते हैं हो नहीं पाता है, हमारे बच्चे नहीं सुनते, हमारे परिवार के लोग नहीं सुनते, आज जो टॉपिक थी ये टॉपिक लगी लगभग उसी के सेंट्रल में घूम रही थी, लेकिन मुझे ये लगा कि आप लोगों की तरफ से कभी एक ऐसा सवाल नहीं आया कि अगर मुझे इन चीजों में अगर आगे जाना है या इन चीजों से अगर निर्विघ्न रूप से बाहर निकलना है तो इसको कैसे किया जाए। मैं चाहता हूं कि डॉक्टर साहब आप जरूर इसको बता दीजिए कि अगर आदमी को इन सारी चीजों से बाहर निकलना है और अपने आप को सचमुच अगर मूल्यवान और आध्यात्मिकता अपनानी है तो उसके लिए करना क्या होगा।
मैं इस क्वेश्चन का जवाब अपने जीवन के एक्सपीरियंस और सबके जीवन के एक्सपीरियंस से देती हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत कंट्रीज में जाने का मौका मिला, ऑलमोस्ट ऑल कॉन्टिनेंट, और बहुत लोगों से मिलने का मौका मिलता है। तो मैं एक ही जवाब है जो मैंने अपने पे अप्लाई किया और दूसरों पे अप्लाई किया वो है बच्चे बनोगे तो बचे रहोगे। आई थिंक इसका मतलब समझने वाला है, अगर आप ईश्वर के बच्चे बन जाएंगे और जो ईश्वर कहता है उसकी हर बात मानेंगे और मन की उंगली और बुद्धि की उंगली ईश्वर से पकड़े रखेंगे तो फिर हम हर बातों से जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कुरीतियां हैं समाज की, जो भी समस्याएं हैं कैसे मैनेज करें, सब चीजों से बचे रहोगे और आनंद का जीवन ईश्वरीय बच्चा बनके जियोगे। दैट इज द आंसर टू ऑल द क्वेश्चन।
इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी अगर टाइम दे दो 2-4-5 मिनट और अपना ब्रह्मा कुमारी जो लोकल ब्रांच है जाके राजयोग मेडिटेशन के बारे में जरूर सीख लीजिए, क्योंकि इससे और किसी को फायदा हो न हो लेकिन खुद को फायदा तो है ही जो आप यहाँ पे देख रही हैं। और उसके साथ साथ हमारा पीस ऑफ माइंड चैनल है, लगभग सारे प्लेटफॉर्म पे है। भगवान आपके ऊपर इतना मेहरबान है कि अब आपके घर में व्यवस्था दे दी है, तो भूले न भटके एक बार टीवी जरूर खोल लीजिएगा ताकि कहीं न कहीं ज्ञान की एक उसकी गूंज जरूर मिल जाए। तो इसलिए आप लोग पीस ऑफ माइंड चैनल और अपने ब्रह्मा कुमारीज का जो नियरेस्ट ब्रांच है आप लोग वहां पे जरूर जाएं, आप लोग जरूर इसके बारे में करें, कम से कम जिंदगी की बदलाव वहीं से शुरू होगी। और अभी हम 3 मिनट ध्यान करेंगे, उसके बाद अपने सेशन की समाप्ति करेंगे। ओम शांति। आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि इसमें से पूजा कितने लोग करते हैं, जरा हाथ खड़ा कीजिएगा। किसी न किसी रूप में भगवान को कितने लोग याद करते हैं, अच्छा किसने याद करते हैं, कुछ आइडिया? पाने के लिए, धन कमाने के लिए या और किसी चीज के लिए? भगवान को पाने के लिए कितने लोग हाथ खड़ा करते हैं, जरा बताइए। अच्छा धन के लिए कितने लोग हाथ भगवान को याद करते हैं, जरा हाथ खड़ा कीजिए। मुझे अच्छा लगा कि आप सब लोग परमात्मा को पाने के लिए पूजा करते हैं और भगवान ने कहा है गीता में कि मैं भक्ति का फल देने के लिए सृष्टि पर आता हूं। तो आप जो लोग यहां पे आए हैं आप लोग अपने मत से नहीं आए हैं, कहीं ना कहीं आपकी एप्लीकेशन उसके पास पहुंचती है और उसी एप्लीकेशन की सुनवाई है कि आप लोग यहां पधारे हैं। तो आप लोगों की एप्लीकेशन सर्वोच्च न्यायालय में ले ली गई है और उस एप्लीकेशन के सुनवाई करते हुए आप सबको यहां पर बुलाया गया है। तो जरूर आप इसका लाभ लीजिएगा। उसका निष्कर्ष है कि आप लोग जरूर उस परमात्मा का जो संदेश है आप किसी न किसी रूप में उसे जरूर एडॉप्ट कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय के बाद फिर आप ये नहीं कह पाएंगे कि भगवान हमने एप्लीकेशन तो दी थी तुम तो हमारा रिसीव ही नहीं किए। तो ये जो कुछ जी आपका लास्ट सवाल है जरा पूछ ले बताइए जी। डॉक्टर साहब आप तो डॉक्टर साहब डबल डॉक्टर हैं, आपको अभी सर्टिफिकेट मिल गया, इसके लिए एक बार ताली बजा दीजिए डॉक्टर साहब को।
ये सब बाबा की कमाल है, हमारी कोई कमाल नहीं है। मैंने बोला ना बच्चा बन जाओ बाबा का, बाबा सब काम अपने आप कराता है, हमें कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है।
मिरेकल वो है मेरे साथ।
अंतिम सवाल क्योंकि घड़ी बंद हो चुकी है जी बताएं।
मैं 10 तारीख को दिल्ली में सरिता विहार के बीके में गई
जी,
उनको दीदी को मिलने के लिए।
अच्छा।
कि मैं आपके पास आना चाहती हूँ।
अच्छा।
क्योंकि मैं काफी 3 साल से काफी दुख का टाइम बिताया।
अच्छा जी।
तो मैंने बैठे बैठे बात हो रही थी तो बात करते करते उन्होंने मेरी एज पूछी, मैंने बताई, कहते हैं जो आपने यहाँ करना है अगर आपको वहां मैं ले चलूं तो आप करोगे। मैंने कहा मैं घर पे बात कर लूं, आप लोगों की बुकिंग सब हो चुकी होगी रिजर्वेशन, मैं कैसे जा सकती हूं। तो मैंने कहा मैं आपको पूछ के घर पे पूछ के मैं आपको बताऊंगी। एंड अगले दिन मैंने उनको कंफर्म कर दिया और बाबा ने मुझे यहां बुला लिया।
आपकी तगड़ी एप्लीकेशन भगवान ने स्वीकार करके आपसे बुला लिया, आप तो खुश हो जाइए। आपको
मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो बहुत ही खुश हूँ
जी।
और मेरा जो दुख से गुजर रही थी वो दुख मेरा
खत्म हो गया,
कम होता जा रहा है।
मैंने हो गया खत्म हो गया, आप यही दे रहे।
ओम शांति।
मैं बहनों से आग्रह करूंगा कि हमारे अतिथियों को सौगात सब। चलिए लास्ट अब इसके बाद में।
ओम शांति। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि शिव बाबा या परमात्मा, जैसे कि अभी दीदी ने भी कहा कि निराकार है और ये एक सवाल उठा था बीच में लास्ट में, मैं जानना चाहता हूं कि परमात्मा जो शिव बाबा हैं उन्होंने इस सृष्टि की रचना क्यों की, उनको हम सबको बनाने की जरूरत ही क्या पड़ी, उनका इसके बिना काम नहीं चल रहा था क्या। मतलब एक मैंने ये कई लोगों में कई फोरम में मैंने आर्ट ऑफ लिविंग में श्री श्री रविशंकर जी से भी ये सवाल पूछा था।
आपका सवाल ये बहुत शानदार है कि कम से कम एक बच्चा अपने बाप से सवाल तो पूछ रहा है।
जी जी बिल्कुल।
तो मैं चाहता हूँ कि आप उस सवाल का जवाब दे दीजिए कि भगवान ने आपको क्यों बना के दे दिया कि आप यहाँ बना।
मैं ये जानना चाहता हूँ और ये मैं कई सालों से इस सवाल की खोज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे
मैं चाहता हूँ कि दीदी बैठी है बाद में मिल लीजिएगा उनसे पूछिए, क्योंकि वो बहुत पुरानी है।
देखो आप पिता हैं, आप बच्चे चाहते हैं
ऑब्वियसली।
तो फिर
सवाल का जवाब मिल गया होगा। और जानकारी चाहिए तो आप दीदी से जरूर मिल लीजिएगा।
थैंक यू दीदी। ओम शांति।
और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने बड़ी धैर्यता से सुना, और तमाम आप हमारे पैनलिस्ट का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने बड़ी तन्मयता के साथ बड़ी आसानी से बड़े प्यार के साथ लोगों के सवालों के जवाब दिए। और हम शुक्रगुजार हैं चक्रधारी दीदी का और डॉक्टर सविता बहन का जो इतना बढ़िया ओकेजन किया जिसपे सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए। हम लोग फिर मिलेंगे 9:45 क्योंकि यहाँ पे अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा जिसमें बेटी बचाओ का संदेश होगा। उसके पहले मैं बहनों से अनुरोध करता हूँ कि वो हमारे अतिथियों को सौगात भेज कर सम्मानित करें। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग उठने से पहले 3 मिनट शुरुआत अपने से ही कर लीजिए, तब यह सम्मेलन सार्थक होगा, मुझे लगता है ऐसा। कृपया 3 मिनट बैठे रहें जी। तीन मिनट के लिए आप लोग बैठिएगा, 3 मिनट धारण के बाद जाइएगा। हमारे अतिथियों का सम्मान हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा और जो जिनके सवाल रह गए हैं वो बाद में जरूर पूछ लें इसके बारे में। मंजिल जी का सम्मान हो रहा है जिनका नाम ही मंजिल है। 3 मिनट हम लोग ध्यान में बैठेंगे, इसके बाद कार्यक्रम समाप्त होगा। 3 मिनट 3 मिनट डॉक्टर साहब डबल डॉक्टर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। 3 मिनट ईश्वर की याद के बाद अपना शुरू करेंगे।